ब्रीफली, जैसे आपकी बुक में कई बेसिक फंडामेंटल्स रिसर्च के लिए कहे, मैं क्विकली बताता हूं। पहली बात जैसे उसने कही कि रिसर्च गैदर्स न्यू नॉलेज फ्रॉम द प्राइमरी डाटा, जो आपके पास डाटा है उसके लिए उसको एनालाइज इकट्ठा करके, यानी हम उसको सिंथेसाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, देन वी ड्रा आवर कंक्लूजन। सो न्यू नॉलेज फ्रॉम द प्राइमरी डाटा, इट इज एक्सपर्ट सिस्टमैटिक एंड एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन। यानी देखिए, ऐसे नहीं, एट रैंडम नहीं, कोई मेरे जैसा आप जैसा कोई रिसर्च हमने कर दी, नो, इट इज एक्सपर्ट। द पर्सन शुड हैव सफिशिएंट नॉलेज अबाउट दैट फील्ड, देन द रिसर्च दैट ही कंडक्ट्स इट शुड बी वेरी वेरी सिस्टमैटिक, विधिपूर्वक। ये नहीं, मुझे ये ख्याल आ गया और मैंने एक आर्टिकल लिख के अखबार में दे दिया और बोला कि ये रिसर्च हो गया जी, हाँ, इंटरनेशनल जो है वो जर्नल्स के अंदर छपना चाहिए, छप गया और वो रिसर्च है। दैट इज, इवन इफ अगर ह्यूमन आइडियाज पर रिसर्च है तो भी इट हैज टू बी सिस्टमैटिक। कहीं लिटरेचर पर रिसर्च है तो इट हैज टू बी सिस्टमैटिक, इट हैज टू बी एक्सपर्ट, एंड एट द सेम टाइम इट हैज टू बी एक्यूरेट, एक्यूरेट, नॉट वेवरिंग। शायद होता रिसर्च वो चीज है जिसमें शायद शब्द की जगह नहीं है, परहैप्स। एक बार मुझे किसी ने एमफिल की रिसर्च के लिए थीसिस दिया कि सर देखे जरा इस थीसिस को, द पर्सन स्टार्टेड विद परहैप्स, एंडेड विद परहैप्स। आई सेड वेयर इज द रिसर्च, व्हेन यू स्टिल आर नॉट श्योर, यू ऑलवेज यू शायद ऐसा होता है, शायद ये है, तो शायद तो रिसर्च नहीं होती ना। मैंने उसको जोक में कहा कि शायद आपने कुछ लिखा है, मेरे विचार से शायद ये रिसर्च नहीं है। सो बिकॉज ये शायद पर ही रुक गई है सिर्फ ना, शायद पर शायरी हो गई। सो इसके बाद देखिए, इट हैज टू बी लॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव, इट हैज टू बी लॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव, प्रिसाइज। तो एक्यूरेट बोला ना हमने, नहीं एक्यूरेट, डोंट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, ओके, या। सो देखिए, इट इज लॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव। लेकिन मुझे लगता है बहन जी, आपने येट शब्द क्यों यूज किया यहां पर, एंड येट प्रिसाइज, और फिर प्रिसाइज, प्रिसाइज नहीं, प्लीज प्लीज, हो सकता है, प्लीज, प्लीज, मैं आप बहन जी बुरा तो नहीं मानेंगे, बीच में एकदम बोलने की बजाय अगर किसी ने कुछ कहना, अगर हाथ रेज करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, दैट वे वी फील डिस्टर्ब्ड, सारा वो लिंक जो फ्लो है वो रुकता है। एतराज नहीं है मुझे, किसी के भी प्रश्न पर एतराज नहीं है, यू आर मोस्ट वेलकम, पूछें, क्योंकि मैं, आई नेवर क्लेम कि आई नो एवरीथिंग, एंड आई ऑल्सो डॉट क्लेम दैट आई विल आंसर ईच वन ऑफ योर क्वेश्चंस, बट स्टिल minimum what I can do is I can allow each one of you to ask questions. So guarantee nahi hai main jawab dunga, lekin aap puche. So dekhiye, ab itna do teen char sentences chal pade na usme aur flow toota. So hum isko na tootne de, kyunki main aaj ye soch kar aaya tha ki puri koshish karunga ki aapko acche se confuse kar do main. और एंड पर आप कहें, या हमें इतना तो पता है प्रोफेसर गुलियानी ने कुछ पढ़ाया, क्या पढ़ाया वो नहीं पता, वो नहीं पता। आज मैं ये सोच, अगर आप प्रश्न करेंगे और मैं जवाब दे दूंगा, स्पष्ट हो जाएगा, तो फिर मेरा एम तो खत्म हो गया, वो तो फिर नहीं हो पाएगा। सो दैट इज व्हाट आई एम एमिंग एट, हाँ। सो आप पूरी कोशिश करें कंफ्यूज ना हो, लेकिन मैं, लगता है मैं कर पाऊंगा आपको, प्लीज। सो चलें, सो आगे जैसे देखिए कि रिसर्च का ऑब्जेक्ट या कैरेक्टरिस्टिक ये भी है, इट एंडेवर्स टू ऑर्गेनाइज द डेटा, इट एंडेवर। आप किताबें बेशक बंद रखे ना, काहे को किताबें हैं? मुझे तो कई बार लगता है क्यों ले आते हैं किताबें आप यहां पर, किस लिए? हाँ क्या क्या बोले आप? अच्छा ओके ओके ओके, अब मेरे सब्जेक्ट में किताब की जरूरत नहीं है, प्लीज बंद करिए इसको, छोड़ दीजिए। जरूरत नहीं है ना, क्या उसमें पढ़ा है किताब में? कुछ नहीं है, वैसे तो हमारी स्पीच में भी क्या है, बेकार। हाँ ये हुई ना बात, देखिए ना सर, अटेंडेंस कंपलसरी ना होती तो आता ही कौन यहां पे? Who cares for your lecture? it okay. चलिए, so book becomes more informative than the teacher, maybe. हाँ जी, तभी तो आप कंफ्यूज हो पाएंगे, नहीं तो आपका ध्यान किताब में लगा रहेगा, पढ़ने में सुनने में लगा रहेगा, तो फिर तो आपको समझ आता जाएगा ना, फिर हमारे टीचर की वैल्यू क्या रहेगी? नहीं ना, चलिए हो गया, बोझ हल्का हो गया ना। हाँ चलिए आगे चलो। देन जैसे हमने कहा, इट एंडेवर्स टू ऑर्गेनाइज डेटा। अब बहुत बार हमारे पास ना, आज की दुनिया के अंदर अगर आप देखें, नॉलेज की एक प्रकार से हर एक के ऊपर बॉम्बार्डमेंट हो रही है। और इससे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा, आप बैठे हैं ना, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक नॉलेज एंड नॉलेज एंड मोर नॉलेज एंड मोर नॉलेज। और जब आप कमरे पर जाते होंगे, कहते होंगे थैंक गॉड इट इज ओवर, शुक्र है आज का दिन खत्म हुआ, जान छुट्टी आज तो। हा? नहीं होता, यू मस्ट बी मैम वेरी अनफॉर्चुनेट कि आपको ये लगता है कि आज दिन खत्म नहीं हुआ, तो फिर दोबारा आ बैठिए ना यहां पर, किसने रोका है? तो देखिए, हम जितना भी डेटा आता है हमारे पास, नॉलेज नॉलेज, उसका कोई फायदा है? अगर हम उसको सिस्टेमेटिकली, उस नॉलेज को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, ये कोर्स 1 है, ये कोर्स 4 है, 4 में भी ये यूनिट 3 है, कोर्स 1 में ये यूनिट 2 है, दिस रिलेट्स टू आवर थीसिस, दिस रिलेट्स टू आवर थ्योरी एग्जामिनेशन, दिस रिलेट्स टू आवर असाइनमेंट। अब देखिए आपने कितने कंपार्टमेंट बना दिए, नॉलेज तो बहुत थी तो उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना, ये ह्यूमन नेचर भी है। एट रैंडम नॉलेज को हम नहीं रख सकते हैं, और रिसर्च का भी ये काम है कि रिसर्च शुड नेवर बी एट रैंडम, कहां किया यहां उठा लो ये कर लो, नो, डेटा हैज टू बी ऑर्गेनाइज इन ए सिस्टेमैटिक मैनर, एंड देयरफॉर द रिसर्च शुड बी पेशेंट एंड अनहरिड। तेजी जल्दबाजी नहीं है। मुझे ध्यान है एक रिसर्चर बायोलॉजी के फील्ड में, रादर जूलॉजी के फील्ड में, वो अपने एक गाइड के पास गया, सर मुझे फिश पर काम करना है, रिसर्च करनी है, मछली पर मुझे रिसर्च करनी है। तो गाइड जो डॉक्टर साहब थे, उन्होंने कहा ठीक है आप बैठिए, लैब के अंदर आया था वो, लैब में बिठा दिया उसको, स्टूल दे दिया, लैब में कुर्सियां तो होती नहीं है, स्टूल पे बिठाया, बैठिए सर आप। उसी समय उसका बेल बजा, फोन बजी, फोन पे बात की, फोन पे कहा आ रहा हूं अभी आया, वो उसे एक मछली दी उसने कि ये लीजिए मैं आता हूं थोड़ी देर में, आपका फील्ड है आप देखिए इसको, मैं अभी आ रहा हूं। घंटा भर आए नहीं डॉक्टर साहब, इन द मीन टाइम अब बेचारा बैठा वेट कर रहा है, रिसर्च करनी है, तो नेचुरली अब डॉक्टर साहब की बातें तो सुननी पड़ेंगी क्योंकि वो मेरे गाइड हैं। तो बैठा फिर ध्यान आया, अरे डॉक्टर मछली दे गया, उसको उलट पलट के देखा, फिर फिर थोड़ा सा इंटर घंटा, मछली के साथ घंटा गुजारना कौन सा आसान काम है। सो देखा मछली, इसके फिन ऐसे हैं, इसमें पूंछ ऐसी है, इसका कलर ये है, इसके अंदर इस दो चार चीजें देखी। तो डॉक्टर साहब घंटे बाद आए, तो डॉक्टर साहब ने पूछा, सॉरी देर हो गया, क्या करते रहे आप? कोई नहीं सर, ऐसे ही बैठा था, जैसे हमारी हैबिट होती है, कुछ नहीं। क्या किया? कुछ नहीं। तो डॉक्टर साहब ने पूछा, कुछ मछली दे गया था? हाँ सर देखा मैंने। क्या देखा? दो तीन बातें बताई। हर बात पे डॉक्टर साहब कहते रहे, गुड वेरी गुड गुड। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा, देखो रिसर्चर के लिए जरूरी होता है कि उसके हाथ में पेन पेंसिल और सामने कागज जरूर होना चाहिए, अदरवाइज ही और शी इज नॉट ए रिसर्चर। तो डॉक्टर साहब ने कहा, वो टेबल पर पेंसिल पड़ी है, ले लो, ये कागज पड़ा है टेबल पर, ले लो ले लो, काम आएगा। ठीक उसी वक्त फिर फोन बजा, डॉक्टर साहब ने कहा, ओहो हो, आई एम सॉरी, आज तो आपको गलत दिन आ गए आप, मुझे फिर जाना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब फिर घंटे भर के लिए गए। अब उसे लगा, पेंसिल दे गया डॉक्टर साहब, चलो मछली पर ही निशान बनाओ, हमारे जैसे हो कागज मिलता है, हम कई बार तस्वीरें बना लेते हैं ना कागजों पर, जिनका हाथ अच्छा चलता है, नहीं तो कुछ ना कुछ लिखो, मेरे जैसा हो कोई दो चार लाइनें लिख देगा, कोई कविता बना देगा, कुछ कह, लेकिन वो चलो मछली पर करता रहा। दो तीन चार पांच छह कुछ बातें मिली, इंटरेस्ट भी हुआ, रियली इसमें तो है। तो डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब ने पूछा, तो कहा जी ये देखा मैंने, और अब डॉक्टर साहब ने पूछा, नोट किया? हां लिखा ना, गुड, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं ना, रिसर्च को ये थोड़ी है, जो बाहर से नजर आता है वही रिसर्च है क्या? हाँ, अरे अच्छे से देखो इसको, तुमने इसके मुंह के अंदर या कहीं देखने का प्रयास नहीं किया, कुछ नहीं कोशिश की तुमने? डॉक्टर साहब ने वो मछली के गले के यहां से थोड़ा सा दबाया जॉज को, मुंह खुल गया, तो देखो ना तुम्हें क्या नजर आ रहा है, अब करो थोड़ी देर बैठो इसमें, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा, यू टेक योर टाइम। सुबह से शाम हो गई और डॉक्टर साहब चार बार गए, और चार बार जब वापस आए तो हर बार वही मछली, वही पेंसिल, वही कागज, और हर बार नई बात, नई बात, कुछ ना कुछ वो बताता रहा। शाम होते होते डॉक्टर ने उसे पूछा, अब रिसर्च तो करोगे या नहीं? कहते नहीं सर। तो अब बताओ? कहते अब मुझे कुछ भी खास नजर नहीं आया, मैंने बहुत देखा, लेकिन इसमें इतना कुछ है जो देखने के लिए मुझे चैन से आराम से बैठ के करना होगा, तो दैट इज रिसर्च। रिसर्च ये नहीं है, मेरे पास कई बार जैसे पीछे एमफिल के कई बच्चे या एमएससी के आपके कई बच्चे जो मेरे पास रिसर्च कर रहे हैं, मैंने उनको रोकता हूं, मेरे पास रिसर्च ना करो आप, क्योंकि आई एम नॉट ए गुड गाइड। मैं जानता हूं अपने बारे में ना, मैं आपको गलत भाषा नहीं लिखने दूंगा, गलत टाइपिंग एक्सेप्ट नहीं करूंगा, कॉमा फुल स्टॉप डैश ब्रैकेट एंड पैरेंथेसिस नहीं होगा तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, बात ठीक नहीं लिखेंगे तो फिर कहूंगा दोबारा करो, ये नहीं कि आप जो है करके आ गए, सर ये कर दो, साइन कर दो, बस हो गया। गाइड इज नॉट मेंट फॉर साइनिंग ओनली। मैं तो आपसे हर चैप्टर मांगूंगा, एक एक चैप्टर मुझे देते रहो, और जब तक मैं उसको अप्रूव ना करूं आगे मत लिखना उसके लिए। आपने लिटरेचर पर कर लिया जी, मुझे 10 दिन काम करने के बाद एमफिल की डिग्री मिल गई, मैं डरा नहीं रहा आपको आपके एमएससी के लिए, लेकिन रिसर्च का मतलब तो रिसर्च है ना, ये तो नहीं कि मैंने फलां लाइब्रेरी से किताब एक मिल गई थी, उधर से वो मिल गया था, मैंने दो को इकट्ठा किया और टाइप करके चला गया गुलियानी साहब के पास, सर ये देखना जरा, उन्होंने कहा वेरी गुड ठीक है, इसकी चार कापियां करा लो, हाँ एक अपने पास रखो, दो यूनिवर्सिटी को भेज दो, एक अपने गाइड को दे दो, हो गई रिसर्च फिनिश। दिस इज नॉट रिसर्च, एक्सक्यूज मी। रिसर्च है तो इट हैज टू बी पेशेंट अनहरेड डेडिकेटेड अच्छे से करेंगे। डरा नहीं रहा, आप गुप्ता जी को मेरी शिकायत मत लगा दें कहीं कि गुप्ता जी ने तो कहा था रिसर्च बहुत सिंपल है, आराम से हो जाएगी, बिना मेहनत के हो जाती है, उसका कुछ नहीं लगता है। वो जैसे उधर एग्जांपल दे रहे थे कि आप अपने सेंटर पे जाएं, दीदी को कुछ बोलें, टोली खिलाएं और वो लिखें और उसके बाद हो गई रिसर्च। दैट मे बी ए प्रोजेक्ट, that may be a project, I said that may be a project, but it is not research. बाद में बात करेंगे, अगर आप मुझे गाइड बनाएंगे तो। हाँ, वो क्यों करेंगे? रिसर्च आपकी है, टाइप आपने करवानी है, आप लगवाओ कॉमा, वो क्यों करे? वो टाइपिस्ट क्यों करेगा? वैसे तो आजकल आपका कंप्यूटर कर देता है बहुत कुछ, कभी नीचे लाल लाइन लगा देता है, कभी हरी लाइन लगा देता है, वो हो जाता है ना, आपको पता लग जाता है यहां गलती है, ठीक कर लो। चलिए, और रिसर्च में देखिए, इट रिक्वायर्स करेज ऑल्सो, हिम्मत चाहिए उसमें। हिम्मत का मतलब वही है ना, डिवोशन चाहिए आप उसमें, डेडिकेटेड होना आप उसके लिए। एंड देन रिसर्च इज हाईली पर्पसिव, पर्पस है उसके पीछे, इट इज नॉट एमलेस रिसर्च। चलो आज तो रिसर्च करते हैं, वो नहीं है, ये नहीं है कि चलो आज खेलते हैं, क्यों भानु भाई चलो आज पिकनिक मनाते हैं, वो नहीं है रिसर्च। तो इट हैज टू बी हाईली पर्पसिव जो है। देन इट एम्फेसाइजेज डिस्कवरी ऑफ जनरल प्रिंसिपल। देखिए रिसर्च के अंदर क्या है, इट इज फाइंडिंग सम जनरलाइज्ड प्रिंसिपल। जो आप रिसर्च कर रहे हैं, जिस फील्ड पर आपने रिसर्च की, एक ऐसा नियम आप ढूंढ देंगे जो सब पर लागू होगा। दैट वुड बी रिसर्च, डिस्कवरी ऑफ सम जनरल प्रिंसिपल एप्लीकेबल टू ऑल, यानी उस स्पीशी के, उस चीज के, उस फील्ड के, वैसे ही हर क्षेत्र के अंदर आपका वो नियम लागू होगा, वो रिसर्च है, जो भी आप नया नियम बना रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। और इसीलिए, क्योंकि ये लागू होनी है, बहुत लोगों ने इसको अप्लाई करना है, देयरफॉर इट मेंटेन्स रिगोरस स्टैंडर्ड्स, जरा सा वेवरिंग नहीं, 2% ऊपर 10% नीचे, वो नहीं, सर्टन स्टैंडर्ड्स हैव टू बी मेंटेन्ड, एक विशेष मापदंड, उस मापदंड पर चलेंगे तो रिसर्च है। चलो हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे, नो, बाबा भी कहता है ये गे गे की भाषा नहीं, रिसर्च में तो बिल्कुल ही नहीं। डेफिनेट, जैसे मैंने शायद की बात अभी कही थी आपसे, नो। और फिर ऑल रिसर्च, जैसे शुरू में हमारा टॉपिक ही है, ऑल रिसर्च स्टार्ट्स विद एन हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस परिकल्पना, जैसे आप कह रहे थे, एक विचार। मेरे ख्याल से सभी इस जाति की सभी मछलियां इस प्रकार का विशेष बात कहकर इस प्रकार का बिहेवियर करती हैं, तो ये एक हाइपोथेसिस है, आप अभी कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में, लेकिन रिसर्च करते करते आप उस तरह की मछलियों को डिफरेंट एनवायरनमेंट में, डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर में, डिफरेंट टाइप ऑफ जो है क्लाइमेट में, वहां आप उनको स्टडी करेंगे, उनके बिहेवियर को उनको देखेंगे, है? उसके बाद आप कर पाएंगे, यस, जो मैंने सोचा था वो हर तरह के क्लाइमेट में लागू होता है, हर तरह के देश वातावरण रीजन में लागू होता है, हर तरह की जियोग्राफिकल कंडीशंस में लागू होता है। उस दिन डॉक्टर निखिल पटेल कह रहे थे सांपों के बारे में कि आपके पास जितनी तरह के सांप आते हैं, 10 में से 9 तो नॉन पॉइजनस होते हैं। अब ये एक जनरल स्टेटमेंट दी गई, 10 में से 9 नॉन पॉइजनस, अब ये रिसर्च के बाद ही कह पाएंगे ना आप, ऐसे तो नहीं कह देंगे एट रैंडम 10 में से 9 नॉन पॉइजनस, नहीं कह सकते ऐसी बात, ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे सकते ना आप, तो तभी तो उन्होंने रिसर्च की होगी, बताया होगा, ढूंढा होगा, उसके बाद उनको पता लगा कि 10 में से मोस्टली 10 में से यानी 90% के आसपास जो स्नेक्स हैं वो जनरली नॉन पॉइजनस होते हैं। केवल 10% स्नेक्स हैं जो पॉइजनस होते हैं, यानी ह्यूमन हैबिटेट्स के आसपास रहने वाले, यानी जहां जहां मनुष्यों का जीवन है उस हैबिटेट के एनवायरमेंट के अंदर जितनी तरह के सांप देखे गए और उनको स्टडी किया गया, उन पर रिसर्च की गई और उससे लगा कि 90% जो है नॉन पॉइजनस है। या आप बोले तो अरे साल भर की मेहनत, लोगों का जिंदगी निकल जाती है, आप तो साल की बात कर रहे हैं, नहीं मजाक की बात नहीं है, आप पढ़ें। यानी ये जो एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पेंसिलिन की बात देखें, एंटीसेप्टिक, अरे एंटीसेप्टिक को रिसर्च करने के अंदर कईयों की जान चली गई, लोगों की, डॉक्टर्स जो रिसर्च कर रहे थे, यस दे डाइड बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन फैल गई, हॉस्पिटल बंद करने पड़ गए, पूरा साल भर हॉस्पिटल बंद रखा, जैसे ही हॉस्पिटल खोला फिर इन्फेक्शन वही की वही आ गई। एंटीसेप्टिक उसकी तलाश यू नहीं हुई है, आपकी जिंदगी इतनी सरल और कंफर्टेबल ऐसे नहीं बन गई, इसके पीछे बहुतों की रिसर्च और बहुतों की जान गई है। एक साल को मत सोचिए, 10 साल भी कुछ बड़ी बात नहीं है, नो रियल रिसर्च, यस। और देखिए जो लोग इवन लिटरेचर के अंदर भी रिसर्च करते हैं, लिटरेचर में शेक्सपियर के प्लेज में ये है, शेक्सपियर के या हार्डी के नॉवेल्स में ये है, चार्ल्स डिकेंस जो है इस सोसाइटी का ये परिकल्पना करता है उसके नॉवेल्स के अंदर, आजकल जो है विमेन राइटर्स पर बहुत है, शशि देशपांडे में विमेन कैरेक्टर्स कैसे हैं उनके ऊपर, और उसमें भी दो दो तीन तीन साल लगते हैं कम से कम, मिनिमम सर 3 years इज ऑलमोस्ट मिनिमम फॉर सच रिसर्च। करना क्या है, जिसमें आपने एक राइटर के, चाहे वो शशि देश पांडे है, कमला मार्कंडे है, कोई भी लिया आपने, नैनतारा सहगल है, वट एवर, उसमें आपने लिया और उसके सिर्फ 2 या 3 नॉवल लिए आपने और उस पर 3 साल लगा दिए आपने, और उसके बाद आपका गाइड कहता है अब इसको दोबारा करो, जाके दोबारा लिख के आओ, आपको गुस्सा आ जाता है, सर मैंने 3 साल लगाए हैं, तो गाइड क्या कहेगा, फेंक दो, 3 साल लगाए हैं तो जो लिखा है इसको फेंक दो, मेरे काम का तो नहीं है ये, ऐसे तो नहीं यूनिवर्सिटी, ऐसे तो नहीं पीएचडी या डॉक्टरेट दे देती आपको, सो इट्स नॉट दैट सिंपल। आपका 1 साल वेस्ट हो गया, वो आपकी आउटलुक है। जब आप रिसर्च करने के लिए बाहर चलते हैं, उठते हैं, तो ये सोच के चले पता नहीं कितना समय लग जाएगा और फिर उसके बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इन इट सेल्फ इट्स ए रिसर्च कि आपका सोचने का तरीका ही गलत था, आपने जो सोचा वो बात गलत थी, शायद आपका सोचने का तरीका भी गलत है। ये तो रिसर्च का रिजल्ट निकल गया ना, दुनिया को मिले ना मिले आपको फायदा तो हो गया ना, कि मैंने ही गलत सोचा था। हाँ ये भी रिसर्च कर ले, तो इसी पर ही करें ना, तो आप साइको नहीं नहीं भानु भाई, ये बात या देखें, ये बात इतनी हंसने की या वो लाइटली लेने की नहीं है, साइकोलॉजी में क्या हो रहा है, दे आर रिसर्चिंग ऑन योर थिंकिंग प्रोसेस, आप कैसे सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, किस एनवायरमेंट में आपके अंदर कैसे विचार आएंगे, किस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करेंगे, दिस इज साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड दिस इज बींग डन। अब तो एक नया सब्जेक्ट भी शुरू हो गया, अब क्या हुआ, कई साल हो गए, अप्लाइड साइकोलॉजी, बहुत साल हो गया उसको भी, अप्लाइड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी उसके बाद अप्लाइड साइकोलॉजी, उस पर भी रिसर्च हो रही है, सो इट इज एंडलेस है ना। सो देन हाइपोथेसिस तो शुरू होती है, इसके बाद जो हम बाद में पढ़ेंगे भी सही, जो भी आप रिसर्च करते हैं इट इज carefully recorded and reported। वो रिसर्च जिसका आप रिकॉर्ड नहीं करते हैं, डाटा उसको लिखते नहीं हैं, कैसे कैसे क्या किया आपने, या वो रिपोर्ट नहीं बनाते हैं रिसर्च की, जिसको आप थीसिस कहते हैं, थीसिस जो आप अलग अलग लेवल पर, अगर आपका प्रोजेक्ट का थीसिस है तो 40-50 पेज, अगर एमएससी का थीसिस है आपका तो 100 पेज, अगर एमफिल का है तो 150-200 पेज, और अगर पीएचडी का है 250-300 पेज, सो अलग अलग लेवल की वो थीसिस, वो रिपोर्ट ही तो है, आपने कैसे किया, हाउ डिड यू स्टार्ट, हाउ डिड यू प्रोसीड, एंड फाइनली हाउ डिड यू अराइव एट दिस कंक्लूजन, जो आपने ड्रा किया, कंक्लूजन ड्रा किया, उस कंक्लूजन पर आप कैसे पहुंचे, क्या क्या किया आपने, दैट इज द रिपोर्ट, जिसको आप थीसिस कहते हैं। सो ये मेन फंडामेंटल थे। अब देखिए प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, यानी अब प्रॉब्लम, अब हाइपोथेसिस बनानी है हमको, तो सबसे पहले तो आप ढूंढेंगे ना प्रॉब्लम ही क्या है, किस फील्ड में जाऊं, कहां रिसर्च करूं। अब आपके लिए जैसे आप कहते हैं टॉपिक टॉपिक सर टॉपिक, कैसा टॉपिक लूं, क्या करूं, किस फील्ड में, तो आप सोचिए ना। वैल्यू एजुकेशन है तो भी आप सोचिए, मेडिटेशन का है तो आप सोचिए, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई तो करिए। यानी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन कर सके, एलुसिडेट कर सके। अपनी प्रॉब्लम मींस जिसके ऊपर मैं रिसर्च करना चाहता हूं। जैसे हम में से कई कह दिया किसी ने कि जी अब द इम्पैक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन प्रोफेशनल वुमेन वर्किंग इन ए बैंक, इम्पैक्ट ऑफ मेडिटेशन, यानी हमारे जो मेडिटेशन है उसका किसी बैंक में काम करने वाली महिलाओं के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने ये प्रॉब्लम ली, अब उस पर रिसर्च कर रहा हूं। अब बात यह है कि मेरा यह टॉपिक ठीक है कि नहीं है, वो भी सोचने की है, क्योंकि जो आप एजम्पशंस ले रहे हैं दे हैव टू बी स्पेसिफिक एंड एक्सप्लेन्ड। आपने कहा कि इंपैक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन प्रोफेशनल वुमेन वर्किंग इन ए बैंक, तो किस क्षेत्र की स्त्रियां, किस बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड की स्त्रियां, बैंक कौन से, कितने, किस क्षेत्र के, किस एरिया, आपने स्पेसिफाई किया। फिर क्या करेंगे आप, दुनिया भर की प्रोफेशनल स्त्रियां दुनिया भर के बैंकों में काम करती हैं, तो उन सब के ऊपर इंपैक्ट ढूंढेंगे क्या आप, कि जी ये कैसे हो सकता है। तो फिर आप टॉपिक ठीक करिए ना, अपना प्रॉब्लम को ढंग से बोलिए ना, प्रॉब्लम को स्पेसिफाई करिए। कमी तो यहां है कि यानी आप किस क्षेत्र के, हरियाणा के, पंजाब के, दिल्ली के, बॉम्बे के, बेंगलोर के, कहां के, किस एरिया में रिसर्च कर रहे हैं। प्रॉब्लम, आप अपनी प्रॉब्लम को पूरी तरह से डिफाइन करिए, सो दैट द नेचर ऑफ योर स्टडी हैज टू बी एक्सप्लेन्ड। इट शुड बी सिंपल, क्रिटिकल, बट एनालिटिकल। एनालिटिकल आप उसको, आपका टॉपिक पढ़कर पढ़ने वाले को समझ आ जाए आप क्या कर रहे हैं। आपका टॉपिक पूरी दुनिया को ले रहा है, पूरी मानवता को ले रहा है, या पूरे मेडिटेशन को ले रहा है, मेडिटेशन के भी कितने इंपैक्ट होते हैं, क्या करेंगे आप। सो टॉपिक बनाते वक्त ध्यान रखेंगे। इसीलिए इसी में कहा जाता है, आइडेंटिफिकेशन के अंदर एक फैक्टर दिया जाता है, डीलिमिटेशन ऑफ योर प्रॉब्लम। डीलिमिटेशन कि आप अपने शुरू से ही रेस्ट्रिक्शंस बता दें, लिमिटेशंस बता दें कि इस फील्ड पर नहीं, 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 मैंने किन लोगों को लिया है, किस प्रकार के विमेन को लिया है। आई हैव टेकन विमेन बिटवीन द एज ग्रुप एंड 30 एंड 45। I have taken the women just of middle class, not including lower class, not including upper class. I have not taken unmarried girls. I have taken only married. I have taken only... These are the limitations of your study, na? Yani kisi bhi kshetr mein aap kar rahe hain. To wahan aapko batana hai ke who is the subject of your study. Who, what, where, how many, ye sari cheeze aapko define karni hai. Yahan tak ki aapka rural hai ya urban hai. Age level kya hai. Geographical situation kya hai. Time kya hai. Wahan bataya. Otherwise to, uski research ka field, jo aapka topic hai, uska field to kitna hi vishal hai. Aap aise to nahi le sakte na research. So, isiliye aapko problem करने के लिए प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए ये ध्यान रखना है लेकिन इसके साथ ही साथ यू हैव टू जस्टिफाई द प्रॉब्लम आल्सो आपने ये प्रॉब्लम ली क्यों मेडिटेशन अमंगस्ट प्रोफेशनल विमेन क्या जरूरत है इसकी कोई फर्क पड़ेगा कोई फायदा होगा यानी कन्विंस द रीडर आफ्टर ऑल आप जो थीसिस लिखेंगे किसके लिए लिखेंगे ये तो नहीं सर मुझे नहीं पता मुझे तो डिग्री चाहिए वो कागज का टुकड़ा चाहिए हैं वही बात नहीं हो जाए कि वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी सो नहीं आफ्टर ऑल जो भी लिखा जाता है किसी रीडर के लिए लिखा जाता है ना आप सोच के देखिए कभी भी आप लिखते हैं आपके मन में एक रीडर होता है कि आपके जो आप लिख रहे हैं इसको पढ़ रहा है कोई कौन पढ़ रहा है उस पढ़ने वाले को आप अपने सामने इमेजिन करके लिखते हैं सो आपका रीडर क्यों पढ़े आपकी इस रिसर्च को क्या जरूरत है उसको सो जब तक आप उसकी सिग्निफिकेंस को आपकी इन्वेस्टिगेशन जो भी है उसकी उसकी सिग्निफिकेंस को आप जब तक जस्टिफाई नहीं करेंगे कि ये वाकई काम आने वाली चीज है यूजफुल है लाभकारी है या फ्यूचर में हेल्प करने वाली है इट्स गोइंग टू ऐड टू द ह्यूमन नॉलेज ये है कहीं तो फायदा हो ना उसका इट शुड नॉट बी रिसर्च फॉर द सेक ऑफ रिसर्च और रिसर्च जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर डिग्री पेपर्स नो अक्सर हमारे यहां बुरा नहीं माने हम जो भी कर रहे हैं कई बार यही होता है कि जी पूरा कर दो और मैं टोका करता हूं कई बार पीछे से बैठा हुआ या सामने बैठा हुआ इशारा करता हूं जब स्टेज पर ऐसा कई बार कोई हमारे स्पीकर बोलते हैं नहीं नहीं इट्स सो सिंपल आप लिखें ना लिखने हो जाए वो तो आपको एनकरेज करने के लिए है कि आप इस क्षेत्र में पढ़ें और पढ़ें लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम रिसर्च को इतना इनसिग्निफिकेंट या चीप बना पाएंगे न अगर हम चीप बनाने का प्रयास करें तो हमारा अपना ही नुकसान होगा तो आम तौर पर हम आम गलतियां कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं इस रिसर्च के टॉपिक को या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए पहली बात तो क्या करते हैं कि हम स्पेसिफिक होने की बजाय एक बहुत ब्रॉड फील्ड ले लेते हैं जो अनमैनेजेबल बन जाता है हमारे लिए बाद में कैसे करें अब ये तो ले लिया टॉपिक तो अप्रूव हो गया इसको करना तो बड़ा मुश्किल है अब इसको अगर मैं स्पेसिफाई करूं तो यूनिवर्सिटी नहीं मानेगी और अगर मैं पूरा करूं तो मेरे से हो नहीं पाएगा फिर टॉपिक बदलिए सो शुरू में पहले ही ध्यान रखें कि डॉट नेम ए ब्रॉड फील्ड इंस्टेड नेम ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम देन कई बार हम क्या करते हैं कि हम इस तरह से उस प्रॉब्लम को स्टेट करते हैं डिफाइन करने का प्रयास करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है रिसर्च उसमें कि हमने प्रॉब्लम को ही ऐसा बना दिया कि उसको किया ही नहीं जा सकता अनलेस कि यू ट्रेसपास द प्राइवेसी ऑफ सर्टन पीपल सर्टन ग्रुप्स उनके व्यक्तिगत जीवन में जाए बिना उसको यह हालांकि आपका फील्ड वो है ही नहीं जैसे ओवरकमिंग डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स थ्रू मेडिटेशन इन द फैमिली ऑफ वर्किंग वेमेन. करें रिसर्च कैसे करेंगे, ओवरकमिंग डोमेस्टिक ओवरकमिंग प्रॉब्लम्स इन द डोमेस्टिक लाइफ ऑफ वर्किंग वेमेन थ्रू मेडिटेशन. कैसे करेंगे मेडिटेशन में डोमेस्टिक लाइफ की समस्या. हमारे आम तौर पर ज्ञान में चलने वाले बहन भाई क्या करते, मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि हमारी ये समस्याएं थी अब नहीं है, हो गई दूर. ये होता था अब नहीं होता था, पहले लड़ते थे हम, अब जब से मेडिटेशन करने लगे हैं नहीं लड़ते हैं. ये रिसर्च हो गई क्या? इनफैक्ट हमने उसको एनालाइज ही नहीं करने का प्रयास किया. क्या मेडिटेशन ही एकमात्र कारण था जिसके कारण झगड़े खत्म हो गए? हो सकता है पहले झगड़े होते थे, बच्चे छोटे थे तभी हो, तो उधर से बच्चे भी तो बड़े हो गए, बच्चे बड़े हो गए समस्याएं कम हो गई. अब मेडिटेशन होता या ना होता पता नहीं. सो आप फैक्टर्स बहुत सारे ऐसे आते हैं. इसी तरह से कई बार हम जो एरर कमिट करते हैं वो बहुत बार अपने टॉपिक को या तो बहुत ज्यादा लोकलाइज कर देते हैं या बहुत ब्रॉड बना लेते हैं. या तो क्या करेंगे, टीचर्स इन गवर्नमेंट स्कूल हिसार, तो कितने एक स्कूल हैं गवर्नमेंट स्कूल हिसार, एक या दो. अब उस रिसर्च का मायना क्या है जो की ही गई है टोटल 15-20 लोगों के ऊपर, तो उसकी एप्लीकेशन वहां के ही लोगों पर होगी ना, 15-20 लोगों पर. तो हमने नैरो डाउन इतना कर दिया कि वो इनसिग्निफिकेंट बन गई, बाकियों के लिए उसका कोई मीनिंग ही नहीं रहा ना, बाकी लोग क्यों पढ़ेंगे उसको. आपने कहा गवर्नमेंट स्कूल, फिर वर्किंग वुमेन इन गवर्नमेंट स्कूल, वर्किंग वुमेन इन गवर्नमेंट स्कूल एट हिसार, फिर वर्किंग वुमेन एट इन गवर्नमेंट स्कूल हिसार बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 30 और 40, और लिमिट कर दिया आपने. वुमेन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 30 और 40 इन द मिडिल क्लास, अब हायर क्लास लो, वो सारा कुछ आप डिलीट करते. कितना लोकलाइज कर दिया उसको, कितने कुछ में आएंगे लोग जिन पर उस रिसर्च का इंपैक्ट होगा या उस रिसर्च का असर होगा, प्रभाव होगा. क्या वो रिसर्च और लोगों पर और जगह पर रहने वाले लोगों पर एप्लीकेबल होगी? बहुत मुश्किल है. सो इसीलिए कई बार हम जो एक और एरर कर देते हैं वो बड़ा अनसाइंटिफिक इमोशनल बायस्ड नेचर से करते हैं. डोंट फील, अगर मैं ये कहूं, कई बार हम, अच्छी बात है मेडिटेशन के लिए, लेकिन हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारीज भी बहुत बार बायस्ड हो जाते हैं. कई बार ये ऐसे ही है क्योंकि बाबा ने कहा है. अब वो बात ठीक है बेशक, लेकिन जब आप ये कहते हैं क्योंकि बाबा ने कहा है तो आप बायस्ड हो गए. हालांकि साइंटिफिकली अगर आप पढ़ते करते तो वही सिद्ध होता जो आप कह रहे हो, वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन ऐसा कहने से क्या हुआ, आपने बायस्ड प्रेजुडिस दिखा दिया कि शायद आप यानी कोई दूसरा विचार देगा तो आप सहमत नहीं होंगे. हालांकि दूसरा विचार अगर आएगा भी तो गलत होगा, आप जानते भी हैं इसको, पढ़ने वाला भी जानता है, लेकिन हम इस तरह से क्यों डिफाइन करें उसको, हम ऐसा क्यों कहें कि इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड. क्यों, जब हमने कहा क्योंकि बाबा ने, अगर ये ऑलरेडी प्रूव्ड है तो फिर आप रिसर्च क्यों कर रहे हैं? व्हाट्स द नीड ऑफ दिस रिसर्च, इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड. सो कहने का बात ये है कि हमें अपना इमोशनल जो आउटलुक है, जब बायस्ड या प्रेजुडिस्ड व्यू है, उसको रिसर्च में नहीं आने देना है, उसको पीछे रखना है उसको. और कई बार हमारा लैक ऑफ प्रिसीशन ऑफ आवर इंस्ट्रूमेंट्स, यानी हम जो इंस्ट्रूमेंट्स रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट जरूरी नहीं है कि वो टूल्स हों आपके, आपके मेथड भी जो हैं, आपकी थिंकिंग भी जो है, आपके आइडियाज, वो भी एक टूल है, इंस्ट्रूमेंट है आपका। लेकिन जब वो इंस्ट्रूमेंट्स जो है प्रिसाइज नहीं, एक्यूरेट नहीं होते हैं, प्रूवन नहीं होते हैं, अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं तो चांसेस हैं कि आपकी रिसर्च के रिजल्ट गलत निकलेंगे। हाँ जी सर, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स को हम ले सकते हैं, लेकिन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स आर ऑलरेडी प्रूवन ना, एस्टैब्लिश्ड है ना, तो दे मे सप्लीमेंट अस इन अवर रिसर्च रिगार्डिंग समथिंग एल्स, यस रिगार्डिंग समथिंग एल्स। लेकिन अगर उसी ही बात को हम रिसर्च में ला रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं उसी बात पर, और फिर हम किसी एस्टैब्लिश्ड फैक्ट को कोट कर रहे हैं, तो हमारी अपनी रिसर्च रिडंडेंट हो जाएगी ना, क्या जरूरत है फिर उसकी। एक तो हम प्रेजुडिस्ड भी हो गए और रिसर्च को हमने रिडंडेंट रादर इम्पॉसिबल सा बना दिया। या हो सकता है कई बार, यानी आप, हां हाँ, मैंने, या आप कहेंगे कि उधर मैंने पहले कहा कि आप बहुत ब्रॉड और पूरा ह्यूमन वर्ल्ड के लिए उस पर अप्लाई करें, और इधर मैंने कहा बहुत ज्यादा लोकलाइज, जैसे मैंने कहा बहुत लोकलाइज नहीं करिए, बहुत जनरलाइज नहीं करिए आप उसको, यानी मीडियन ना, एक रास्ता, मिडल पाथ, दैट वुड बी रॉन्ग। वन एरिया में मे बी, देखिए ना आपका, हम आगे आएंगे अभी, सॉरी, देखिए आगे हम बात करेंगे, सर्वे मेथड पर आएंगे, जब हम सेंसस पर आएंगे बात करेंगे कि आपका जो फील्ड है उसमें आप किस तरह से एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे, तो वहां फिर यही बात करेंगे कि आपका जो सब्जेक्ट है जिसमें कितने एक लोग आते हैं, क्या वो ना तो बहुत थोड़े हों ना अनमैनेजेबल हों, ग्रुप जो है वो ठीक हो। अब आपने एक स्कूल, अगर आप हिसार कोई जैसे हमने लिया, अगर आप वहां के 20-25 स्कूल लेते हैं, 15-20 स्कूल लेते हैं, और उसमें उम्मीद है अलग अलग सोसाइटी के सेक्शन से लोग आते हैं, एम्प्लॉयज भी अलग अलग एरिया से आते हैं, हिसार शहर के अलग अलग एरिया से आते हैं, तो वो रिसर्च बेटर होगी बजाय इसके कि आप एक स्कूल पर जो है फोकस करें अपने आप, दैट वुड बी द, या चलिए इसके बाद देखिए रिसर्च डिजाइन एंड टाइप्स। देखिए हमें वैसे तो दो पीरियड मिले हुए हैं, लेकिन मुझे कहा गया कि आई शुड फिनिश एट 6, 6 बजे तक मैं खत्म करूं, मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा है, ये इट्स वेरी वास्ट टॉपिक रिसर्च, और उसके बाद हमें नेक्स्ट टाइम भी दो पीरियड दिए गए हैं, वो अगले उस पीरियड के लिए, वो भी बहुत थोड़ा टाइम है, इसीलिए थोड़ा सा हम जल्दी अगर चलें तो। देखिए रिसर्च डिजाइन एंड टाइप्स, तो आपकी बुक में भी जैसे कहा गया है, मेथड्स मे बी बेस्ड ऑन मेनी पॉइंट्स ऑफ व्यूज डिफरेंट, यानी आप रिसर्च कैसे करते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स, कौन सी टाइप्स का इस्तेमाल करते हैं, क्या ये बहुत बातों पर डिपेंड करता है कि आपके रिसर्च का फील्ड क्या है। अब देखिए अगर आप एजुकेशन के फील्ड पर कर रहे हैं, वैल्यू पर कर रहे हैं, फिलॉसफी पर कर रहे हैं, साइकोलॉजी पर कर रहे हैं, अगर आप जूलॉजी पे कर रहे हैं, बायोलॉजी पे, तो नेचुरली आपका फील्ड अलग अलग है, तो मेथड भी अलग अलग होंगे ना। ये तो नहीं हो सकता कि आपने जो मेथड एजुकेशन यानी लिटरेचर के लिए किए या वैल्यू किए, वही आप पशु पक्षियों पर या वेजिटेशन पर रिसर्च करें तो वही मेथड यूज होंगे, नहीं हो सकते, वो वेरी करते हैं आपका फील्ड। फिर आपका पर्पस क्या है, उससे भी जो है वो आपके मेथड्स अलग अलग होंगे, जिस पर्पस के लिए है आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं किसी के बिहेवियर को, यानी एक पर्टिकुलर ग्रुप आपने लिया, यानी चाहे वो जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, मनुष्य हैं, यानी उनका बिहेवियर आपने सिर्फ डिस्क्राइब करना है, यू डोंट वांट टू चेंज देम, यू डोंट वांट टू आइडियलाइज देम, सिर्फ आप तो एक तरह की डिस्कवरी कर रहे हैं वो, या आप उनके जो है दूसरे कॉजेज को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, उसका स्टेटस डिटरमिन कर रहे हैं, या उस पर कुछ प्रिडिक्शन कर रहे हैं, इसके साथ ही आपका प्लेस जहां आप जो है वो कर रहे हैं, यानी रिसर्च आपकी फील्ड में हो रही है या किसी लैब में हो रही है। अब बहुत सारी जब आप रिसर्च करते हैं केमिस्ट्री की लैब में हो रही है, केमिकल्स पर, वो फील्ड पे कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स पर कर रहे हैं तो वो लैब में नहीं ही होगी। सो उससे आपके मेथड बदलते जाएंगे ना, जिस तरह का, और फिर इसी तरह आपकी रिसर्च की एप्लीकेशन क्या है, प्योर रिसर्च है या अप्लाइड है। अप्लाइड है तो फिर आपके लिए कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स चाहिए ना जो तैयार हो, आपका जो भी सपोजिशंस है उसके लिए कुछ लोग सामने आए। जैसे हम जो है मेडिसिन के अंदर इवन मॉन्कीज पर, पिग्स पर, इन पर रिसर्च करते हैं, वो हमारे सब्जेक्ट है, उनको वो जो हमारी सपोजिशंस हैं, वो मेडिसिन्स हैं, कॉम्बिनेशंस हैं, वो उनको देते हैं, उनका असर देखते हैं, उसके बाद उनको बदलते हैं, चेंज करते हैं। इसमें कितने लोग मर भी जाते हैं, उसका इंपैक्ट है या नहीं है, यानी वो अप्लाइड रिसर्च है। प्योर रिसर्च अगर आप करना चाहते हैं उसमें भी आप लैब में भी जा सकते हैं, और बहुत बार केवल आपको लाइब्रेरी की किताबों से ही रिसर्च हो रही है। लिटरेचर पर अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, मैगजीन मिल गई, न्यूज़पेपर मिल गए, आर्टिकल्स मिल गए, जर्नल्स मिल गए, लाइब्रेरी में बैठे आप रिसर्च कर रहे हैं, आप लोगों को मिले ना मिले उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपने डिकिन्स को पकड़ा या किसी भी जो है मुल्खराज आनंद को पकड़ा, आर के नारायण को पकड़ा, किसी को भी लिया, आपने उसकी रिसर्च, उसकी राइटिंग्स, उसके ऊपर जितना क्रिटिसिज्म लिखा गया सारा आपको लाइब्रेरी में मिला, आपने बैठ के उसी के ऊपर रिसर्च कर, तो आपके मेथड बदलते जाएंगे ना आपके। सो इसी तरह से जो है कैरेक्टर ऑफ डेटा आपका क्या है, यानी आप जिस डेटा को एनालाइज कर रहे हैं वो डेटा ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी थिंकिंग कैसी है, इंडक्टिव है, डिडक्टिव है, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आपके मेथड्स ऑफ रिसर्च डिपेंड करते हैं। सो इसीलिए मेथड्स में क्या आते हैं, हमारे पास हिस्टोरिकल मेथड है, सर्वे मेथड है, केस स्टडी है, स्टैटिस्टिकल स्टडी है, एक्सपेरिमेंटल है, या इन सब में से दो या चार का कॉम्बिनेशन भी है। ये सारे मेथड हैं जिससे हम रिसर्च करते हैं, और फिर हम कौन सी टेक्निक अपनाएंगे। टेक्निक में भी आपको, जैसे पिछले साल भी आप में से बहुतों ने किया होगा, क्वेश्चनेयर जैसे कहते हैं आपको, आपने वो क्वेश्चनेयर की टेक्निक ली है, वो मेथड के तौर पे भी ले लेते हैं, टेक्निक के तौर पे भी ले लेते हैं, दोनों लगभग सेम सा है, कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। लेकिन इसके बाद आप केवल वही एक तो नहीं है ना, आपको शायद यहां बताया जाएगा इंटरव्यू मेथड भी है, उसको टेक्निक है, उसको भी लीजिए। आप लिटरेचर को स्टडी करते हैं, ऑटोबायोग्राफीज को भी स्टडी करिए, आप बहुत सी चीजें पिक्चरों में मिलती हैं जो आपको पता लगता है कि इसके ऊपर कोई जो है वो ऐसी पिक्चर बन चुकी है, फीचर फिल्म है, या कोई ऑब्जेक्टिव जो है वो नॉलेज बेस्ड फिल्म है, वो बनी है कई, वो मिलेंगे। इसी तरह से बहुत सारे टेस्ट्स हैं, रेटिंग स्केल्स हैं, जिनके आधार पर आप जो है अपने मेथड्स को यूज करते हैं, ऑब्जर्वेशन हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं, आपको अपनी रिसर्च में वो भी देखने पड़ते हैं कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिलता है बहुत बार। जैसे आप कोई हिस्टोरिकल चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, मान लीजिए आपने किसी अपना फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया पे आपने रिसर्च करने की कोशिश की मान लीजिए, तो वहां आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ऑटोबायोग्राफीज, फिल्म्स या ये इस तरह का मैटर, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, ये बड़े काम आएंगे आपको, क्योंकि आप एक ऐसा फील्ड ले रहे हैं हिस्टोरिकल है वो। इसी तरह से अगर आप और पीछे चले जाएं, यानी सोशल लाइफ इन मुगल इंडिया, अब वहां के लिए आप कहें जी मैं तो डॉक्यूमेंट्स को पढ़े बिना ही, देखे बिना ही मैं रिसर्च कर लूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आप उस समय की लाइफ को, बुक्स को, लिटरेचर को स्टडी नहीं करेंगे, मुगल इंडिया में बाबर ने क्या लिखा, बाबरनामा जो है वो क्या है, उसको पढ़ना जरूरी है, उस दौरान के अंदर किस तरह के लोग हुए, रिलीजियस लोग कैसे थे, उन्होंने क्या क्या कहा, सूफी लोग हुए, वहां के पोएट्स हुए, उन लोगों ने क्या कहा, और उनके अंदर जो है उस समाज के बारे में क्या क्या बातों का पता चलता है। यानी ऑल दिस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैज टू बी यूज्ड। ऐसे नहीं कि हम रिसर्च कर लेंगे, किसी ने कुछ कहा और उस वक्त के ऊपर, मान लीजिए कोई फिल्में बनी हुई है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है या फीचर फिल्म है, कुछ भी हो, उस वक्त के, अगर जब मुगल इंडिया के बाद जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स बनने लगे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट गजेटियर इशू करने लगे हर साल, तो वो गवर्नमेंट गजेटियर क्या कहते हैं उस बारे में, शायद आपको इस बात का, बहुतों को जो यंग ब्लड है उसको शायद ना पता हो कि किसी भी शहर के बारे में वो शहर क्या है, उसका नाम कैसे पड़ा, उसकी आबादी कैसी है, शुरू के लोग कैसे थे, सबसे पहले कैसे लोग बसे, इसका विकास कैसे हो, ये सारा का सारा गजेटियर में मिलेगा आपको। उस शहर का गजेटियर आप पुराना ढूंढिए, अगर आपका शहर जो है ब्रिटिश टाइम से बसा हुआ है, उस वक्त का है, तो उन्होंने जरूर गजेटियर इशू किया हुआ है, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है आपका, उसको तो नहीं झुठला सकते आप। सो उसको स्टडी करेंगे ये सारा का सारा। तो ये सारी चीजें जो हैं आपके रिसर्च डिजाइन के अंदर आती हैं, आपके रिसर्च को डिटरमिन करती हैं। डर लगने लग गया ना, हो गया ना, कंफ्यूज होने लग गया ना, हो गया, अब शुरू हो गया ना काम डरने का थोड़ा सा, नहीं अभी नहीं हुआ, चलिए फिर आगे चलते हैं और ट्राई करते हैं। अब ना करें क्वेश्चन, देखा ना, देखिए सर आप जो बता रहे हमें उससे क्या लेना, क्योंकि वो टॉपिक तो हमारे से रिलेटेड ही नहीं है, छोड़िए ना, जाने दो, बस प्लीज प्लीज प्लीज, समझ गया मैं, ओके ओके, जस्ट जस्ट नॉट टेकन सीरियसली, मैं घड़ी देख रहा हूं बार बार, क्योंकि मुझे घड़ी पर है, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक, हाँ अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छी बात है, डूबते जाइए गहरे और चलते चलिए। चलिए मेजर रिसर्च मेथड्स क्या है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है मेजर रिसर्च मेथड्स की, यानी मेजर रिसर्च मेथड्स में जैसे हम सबसे पहले हिस्टोरिकल लें, इसमें भी आप देखें दो तरह का, हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हैं। यानी पहले तो हम इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन तो जो है हम देख रहे हैं ना, हमारे सामने हो रहा है ना सारा कुछ। अब देखिए हिस्टोरिकल के लिए मैं कह रहा हूं, बहुत से लोग आज भी हैं जो 1947 में जिंदा थे, और जिन्होंने 1947 में भारत का जब डिवीजन हुआ, भारत आजाद हुआ, किस प्रकार की घटनाएं हुई, किस प्रकार के कम्युनल रॉयट्स हुए, किस प्रकार की वॉयलेंस हुई, वो सारा उन्होंने देखा है ना। अगर आप उनसे बात करेंगे, आपका टॉपिक मान लीजिए उससे रिलेटेड है, उनसे बात करेंगे तो वो अपनी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन बताएंगे ना आपको, डायरेक्ट, क्योंकि उन्होंने अपने, दे आर आई विटनेस, एक तरह से उन्होंने खुद देखा है उससे उन सारी चीजों को। और कईयों से बात करें वैसे ही रिसर्च नहीं कर रहे तो वो कहते हैं सर मत याद कराओ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस वक्त को, और सिर्फ हमने देखा ही नहीं है, हम उससे गुजर कर आए हैं, उससे गुजर कर आए हैं, हमने एक्सपीरियंस किया है वो क्या था, हमने वो देखा है वक्त जिस समय हमें ये डर था कि कल की सुबह हम देख पाएंगे कि नहीं, उस समय से गुजरे हैं, हमने अपने सामने अपने रिश्तेदारों को कत्ल होते हुए देखा है, हमने अपने सामने अपने घर को आग लगाते देखा है, और हम कुछ नहीं कर सकते थे, ऐसे लोग मिल जाएंगे हैं। माई पेरेंट्स, माई फादर पर्टिकुलरली यूज टू टेल मी सो मैनी थिंग्स, हॉरिफाइंग थिंग्स, कि सुनकर सुनने वाला दहशत में आ जाता, अरे ये ऐसे हुआ, Could this happen in this manner? Yes, it did happen. और वही कहानियां हम बार बार पिताजी से कहते, वो सुनाओ ना, जब आप वहां से निकले, जब आप लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंच गए, वहां जब आप टेंट में रुके तो क्या हुआ, उसके बाद जब आप गाड़ी में आ रहे, यानी हम एपिसोड्स को पकड़ते हैं, वो एक एक एपिसोड, दैट इज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, जो खुद देखा है उस चीजों को, जैसे जैसे वो बताते हम विजुलाइज करते हो, गॉड कुड मैन बी सो ब्रूटल, मानव इतना निर्दयी भी हो सकता है कि अगर रास्ते में गाड़ी खराब हो गई है तो ड्राइवर या वो इंस्ट्रक्ट करते हैं दाएं बाएं के खेतों में मत जाना, यहां के किसी भी कुएं से पानी मत भरना पीने के लिए, हो सकता है उस कुएं में जहर डाल दिया गया हो, डोंट टेक, तो ऐसी ऐसी बातें सुनने में आती। सो द होल एटमोस्फियर वॉज चार्ज्ड विद ब्लड एंड वॉयलेंस, दैट वॉज दैट इज, यानी हिस्टोरिकल, अगर आपका टॉपिक और हिस्टोरिकल मेथड यूज करें तो दैट वुड बी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। इनडायरेक्ट में, जैसे इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में आपको डॉक्यूमेंट्स मिल गए, यानी अगर मान लीजिए मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा था उसी समय फादर ने मुझे सारा कुछ बताया और मैं उस सारे को लिखता हूं, उनकी एक बायोग्राफी बनाकर उसको बुक फॉर्म में छापता हूं, तो दैट इज डॉक्यूमेंट्री। मैंने तो नहीं भोगा ना, मैंने देखा भी नहीं है, मैंने सुना है, उस सुने हुए को अपने शब्दों में लिखा है, उस दैट बिकम्स ए डॉक्यूमेंट, दैट बिकम्स ए डॉक्यूमेंट। और समबडी हु हैज विटनेस्ड दैट हैजंट पास्ड थ्रू दोज थिंग्स, हैजंट बीन डायरेक्टली इन्वॉल्व। अब देखिए, जैसे देखिए बहुत सारे हमने पिक्चरें भी ऐसी बनाई हैं पार्टीशन के ऊपर जो है, और कई बार हमें लगता था कि पिताजी अगर उनमें से कोई फिल्म दे, कहते ये क्या है, बेकार, बिल्कुल गलत है, कुछ नहीं, इनको तो ये सच बताना भी नहीं आता, यानी दैट इज सो आई मीन दीज सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन ये ऐसी इंफॉर्मेशन जो होती है वो बहुत बार अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होती है। रिसर्च में आप लैब में जैसे आप क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो सारी चीजों को अपने हिसाब से प्रॉपर प्रोपोर्शन में, प्रॉपर एनवायरमेंट में उसका जो है रिएक्शन देखते हैं। लेकिन हिस्टोरिकल मेथड के अंदर जो चीज हो रही है तो वो तो अनकंट्रोल्ड रहेगा ना, उस पर आप नियंत्रण तो नहीं कर सकते ना कि ये घटना कैसे हो, कब हो, कौन बंदूक उठाए, कौन गोली चलाए, और किसका काम तलवार उठाना है, किसका काम अपनी गर्दन को आगे लेके आना है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। So this is all uncontrolled. You never know what is going to happen next moment, but it happens. So uska accurate record rakhna wo effort hai aapka, wo aapka kaam hai, dikkat hai. So isiliye phir usko jo hai interpret karna. Ab dekhiye, interpret karne mein bhi biases bahut ho jate aise human behavior par. ह्यूमन बिहेवियर पर जब आप जजमेंट पास करने का प्रयास करते हैं तो हमेशा एक डर रहता है कि आप गलती करेंगे, आप बायस्ड होंगे। अगर आप हिंदू मुस्लिम कम्युनलिज्म पर बात कर रहे हैं, हमारे चलिए वो 47 को तो छोड़िए, उसके बाद बहुत ऐसे कम्युनल राइट्स हुए हैं ना, लगभग भारत के हर स्टेट के अंदर, एक आधी स्टेट का नाम क्यों लें, सारी स्टेट्स के अंदर कभी ना कभी ऐसे कम्युनल राइट्स हुए हैं। तो उन कम्युनल राइट्स पर आप जो जजमेंट देते हैं, यानी उनको जो इंटरप्रेट करते हैं आप, तो डिपेंड करता है आप किस साइड से हैं। अगर हिंदू मुस्लिम के अंदर हुआ है, अगर आप मुस्लिम हैं आप लिखेंगे या बताएंगे तो आपकी जो व्यू होगा वो नेचुरली बायस्ड होगा ना, यू विल बी प्रो हिंदू या प्रो मुस्लिम, तो वो इंटरप्रिटेशन के ऊपर भी जो है काफी प्रॉब्लम रहती है। और नेचुरली वर्बल जो आप शब्दों में कहेंगे, उस शब्दों के अंदर भी एक्सपोजिशन मे नॉट बी एज एक्यूरेट, एज डिपेंडेबल एज इट शुड बी। इसी तरह से नेक्स्ट, जैसे जो है नॉर्मेटिव स्टडी जो है, नॉर्मेटिव सर्वे, नॉर्मेटिव यानी व्हाट शुड बी, व्हाट इज आइडियल, उसके लिए भी یعنی وہاں ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ آبزرویشن کو لیتے ہیں ایک انٹرویو کی فارم کے اندر جو ہے. ڈائریکٹ کیسے ڈائریکٹ آبزرویشن ان این انٹرویو. اب جیسے دیکھیے کہ میں آپ کے پاس آیا, آپ سے انٹرویو لینا ہے, تو آپ کو کوشچن کروں گا, آپ کا امیجیٹ جو ریئیکشن ہوگا اس کو ریکارڈ کروں گا نا, تو یہ میری ڈائریکٹ آبزرویشن ہو رہی ہے نا. میں نے پرشن پوچھا, آپ ایک دم چونک گئے, تو میں نے اس کو نوٹ کیا, تو آیا میں نے ایفیشینٹ انٹرویوئر. اگر میں اس کو نہیں نوٹ کر پایا تو نو آئی ایم ناٹ. آپ کے ریئیکشنز کیول شبدوں کے نہیں, آپ کے بھاواتمک ریئیکشنز جو ہے وہ بھی ایک پارٹ ہے اس کا. انٹرویور کے لیے یہ عام طور پر بولا جاتا ہے, انٹرویو کی جو ہے فائدے نقصان کے بارے میں, اور کوشچنئر کے جب ہم فائدے نقصان کی بات کرتے ہیں اس میں یہ بات آتی ہے. کوشچنئر کے اندر آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا, آپ نے کوشچنئر بھیج دیا, اس کا جواب یس نو ڈونٹ نو میں آ گیا, ختم. لیکن اس کوشچن کے پرتی اس کی پرتیکریا کیا تھی, اس کی پرتیکریا کیا تھی. جیسے میں بہنوں سے, کئیوں سے میرڈ بہنوں سے پوچھوں, ڈو یو لائک دا بہیویئر آف یور ہسبینڈ وین یو گو ٹو اے برہما کماری سینٹر, اور میں ان کا دیکھتا ہوں وہ یس نو جو بھی کر دیں میں ان کے چہرے کی طرف دیکھتا ہی نہیں, تو شاید وہ یس مجھے خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, کیونکہ میں برہما کماری سے آیا تو یہ بھائی خوش ہو جائے گا, یس یس وی آر ہیپی دے آر ہیپی. سو وہ تو نہیں ہے نا. سو ہاں جی سر, ہاں لمیٹیشن, لیکن یہ لمیٹیشن تو نہیں ہے نا کہ اگر آپ نے انٹرویو میتھڈ یوز کیا تو آپ اس پرسن کے ریئیکشنز کو بھول ہی جائیں, تو دین یور ریسرچ از ویری ویک اینڈ ریڈنڈنٹ. اٹ شوڈ بی اکوموڈیٹڈ رائٹ ایٹ دا ٹائم آف دا کوشچن ویئر ایور یو انٹرویوئر. جب آپ انٹرویو لے رہے ہیں تو آپ جہاں اس کا آنسر لکھ رہے ہیں, اٹ از اسینشل کہ آپ اس کے اندر بریکٹ کے اندر لکھیں دو دا پرسن سیڈ یس بٹ آئی کوڈ سی دا سرپرائز آن ہز اور ہر فیس. لکھے نا, کیا کس نے روکا ہے آپ کو؟ نہیں روکا, ایسی بات نہیں ہے, کہیں ایسی لمیٹیشن نہیں ہے. یعنی اس کے بھاواتمک ریئیکشن کو نوٹ کرنا آپ کی ڈیو. یعنی پتہ کیا ہے, ہمارے اس لیول پر ایم ایس سی لیول پر, کیونکہ ریسرچ جو ہے بہت سمپل لیول کی ہے, یعنی اٹ از جسٹ ون ٹائپ آف پیپر ڈن ان پی سی پی اینڈ کمپلیٹڈ ایٹ ہوم without even going to any center, any field, meeting any persons, تو ہو جاتا ہے نا. تبھی تو ہم کہتے ہیں relax, it will be done, don't worry. It should not be done like that. So, that is, please, you are free to criticize me, but then, جو ہے وہ تو ہے. میں آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا, جو نہیں ہے وہ ہے, جو ہے وہ ہے. واٹ از از, آئی ول ناٹ سے کہ دس از دو اٹ از ناٹ, نو آئی ول ناٹ. سو دیکھیے, دین وی ہیو ایکسپیریمنٹل میتھڈ. ایکسپیریمنٹل ایز اٹ کلیئرلی دا ورڈ سیز, experiment that is under controlled circumstances, controlled observation, direct observation it is. Yani cross-sectional casual relations jo hai wo hum study karte hain, unka cause-impact ka relationship kya hai, and we try to evaluate and compare, kyunki experimental hai na. Most probably if you are conducting it in a library or in a lab or any such place where we can control the situations, where we can control even the atmosphere of the thing. تو وہاں پر جو ہے وہ کس طرح, ایون آپ سوچیں گے کہ ایکسپیریمنٹل تو لیب میں ہوتا ہے تو نیچرلی ڈیڈ چیزوں نہیں, ایون آن اینیملز آلسو سچ ایکسپیریمنٹس آر کنڈکٹڈ, कि रैट्स जो है वो इस तरह के एनवायरमेंट में इस जगह पर किस तरह का बिहेवियर करेंगे, कितने तरह के रैट्स करेंगे। सो यानी इवन साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स भी जो है एनिमल्स पर किए जाते हैं। अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी है, लर्निंग थियरीज पढ़ी हैं कि लर्न कैसे करता है आदमी, कंडीशनड लर्निंग क्या है, लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर क्या है, कॉग्निटिव लर्निंग क्या है, यानी हाउ डज दिस टाइप ऑफ लर्निंग टेक प्लेस, तो वो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं उस पर अंडर कंट्रोल्ड सर्कमस्टांसेस। जैसे ट्रायल एंड एरर के लिए बताया जाता है, लर्निंग कंडीशनड लर्निंग जैसे बताई जाती है, कुत्ते के लिए जैसे बताया गया कि वो कुत्ता किस तरह से लर्न करता है, उसके मुंह में लार क्यों आ जाती है और किस तरह से हम उसको चेंज कर सकते हैं, स्टिमुलस क्या है, रेस्पॉन्स क्या है, यानी ऑल दीज थिंग्स दे आर इन ए कंट्रोल्ड मैनर एंड दे कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटल मैथड ऑल्सो। हम ऑब्जर्वेशन मैथड से भी कर सकते हैं लेकिन दैट विल टेक ए प्रेटी लॉन्ग टाइम। वो नेक्स्ट टाइम वैसी सिचुएशन कब आएगी, यानी कब जो है वो बिल्ली के सामने दूध रखा जाएगा और बिल्ली किस तरह से रास्ता ढूंढेगी, वो दैट में टेक टाइम। लेकिन अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, दूध रखते हैं और बिल्ली को जो है एक बक्से के अंदर बंद करते हैं और वो बिल्ली किस तरह से रास्ता बाहर निकालती है, कोशिश करती है, तो दैट इज ट्रायल एंड एरर। वो किधर कोशिश करेगी, हाथ पांव मारेगी, करेगी, करती रहेगी, अल्टीमेटली कहीं उसका हाथ लग जाता है जहां लैच है, यानी जहां वो कुंडी सी है हल्की सी, और वो उसका हाथ लग जाता है, दरवाजा खुल जाता है, बिल्ली आती है, दूध पी लेती है, चली जाती है। नेक्स्ट टाइम फिर आप करेंगे तो उसका जो एफर्ट है, अब उसका एफर्ट जो है वो पूरे बॉक्स की तरफ नहीं होता है। यानी पहले भी अगर मान लीजिए दूध इधर रखा हुआ है और दरवाजा शायद इधर था, तो बिल्ली शायद इधर ज्यादा जोर लगा रही थी क्योंकि इधर दूध पड़ा है, लेकिन वो फिर उधर इधर को जब इधर हाथ लग गया उसका और बिल्ली बाहर आ गई, तो अगली बार जब आएगी तो उसका एफर्ट जो है वो हर तरफ नहीं होगा, वो कोशिश करेगी पिछली बार कैसे खोला था, ट्रायल एंड एरर वहां कोशिश करती है। मान लीजिए अब आपने बॉक्स का मुंह घुमा दिया, तो ये ट्रायल एंड एरर, और एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि जब आपने बिल्ली को अंदर डाला, दूध रखा, बिल्ली चुपचाप दरवाजा खोल के आ गई, पी लिया। कई बार हम अक्सर कहते हैं ना, बिल्ली को रास्ता पता लग गया, अब तो बिल्ली को रास्ता मालूम हो गया, इसीलिए वो आती है, पी जाती है, दूध पी जाती है, खा जाती है, वगैरह वगैरह। तो दैट इज हाउ द ट्रायल एंड एरर, वी ह्यूमन बींग्स ऑल्सो लर्न, मेनी अ टाइम वी लर्न बाय ट्रायल एंड एरर, एवरीबडी लर्न्स लाइक दिस, एनिमल्स लर्न लाइक दिस। इसी तरह की कंडीशनड लर्निंग होती है हमारी। क्या कारण है कि फरवरी मार्च के अंदर जो है स्टूडेंट्स के अंदर एनर्जी आ जाती है, पढ़ने की इच्छा हो जाती है और वो खूब पढ़ते हैं, नींद भी कम आती है, पढ़ाई खूब हो जाती है, क्या कारण है? इज इट नॉट कंडीशनड लर्निंग? यानी इम्तहान, इम्तहान क्वेश्चन पेपर पढ़ाई, इम्तहान क्वेश्चन पेपर पढ़ाई, वो एक सिस्टम। जैसे कुत्ते के सामने जो है वो खाने का चीज रखी गई, मांस रखा गया, वट एवर, और जैसे ही वो खाने को देखता है उसके मुंह में लार आती है, लेकिन जैसे ही हम खाना रखते हैं उसके लिए, रखने के साथ एक सेकंड पहले हम घंटी बजा देते हैं, तो वो क्या देखता है कुत्ता, घंटी बजी, खाना आया, उसके मुंह में लार आ गई, खाने को देख के लार आई, खाने को देख के लार आई। लेकिन थोड़े समय बाद जैसे ही घंटी बजती है उसको लगता है अब खाना आएगा, लार आ जाती है। अब घंटी में लार क्यों आ गई भाई कुत्ते की? वो कंडीशनड हो गया कुत्ता कि घंटी के बाद भोजन आना है, घंटी के बाद ये होना है। बहुत सारा हमारा ह्यूमन बिहेवियर कंडीशनड लर्निंग पर है। बच्चे ने मां बाप का मुंह देखा, अब कुछ होने वाला है, अपने अपने कमरे में बैठ जाओ, पिटाई हो जाएगी, दैट इज कंडीशनड लर्निंग। वो देखता है जब कभी मम्मी पापा की इस तरह की बात होती है तो घर में झगड़ा होता है, बच के रहो, दैट इज द लर्निंग। या जब कभी पिताजी का ऐसा मूड होता है तो उस दिन किसी ना किसी बच्चे की पिटाई होने वाली है, तो फिर बच जाते हैं, बचते हैं कि देखो मेरा नंबर ना आ जाए। तो इस ऑल कंडीशनड लर्निंग ना। सो दिस सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स गो ऑन, देर आर अदर मेथड्स ऑल्सो। जब हम इस तरह के और किसी तरह के कॉजल कॉज एंड इफेक्ट, कॉजल रिलेशनशिप्स को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, वो चाहे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में करें, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में करें हम जो है, सो वो सारा कुछ चलता है, मेनली अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन चलती है समाज के अंदर। हर चीजों को हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते ना। अब आप जितना भी आप करेंगे मेडिटेशन और ये वो सारा, ये आपका कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन तो नहीं है ना। कैसे होता है, किस पर क्या प्रभाव पड़ता है, हरेक का अपना अपना प्रभाव है, वो कंट्रोल्ड नहीं है आपका। और फिर ये क्रॉस सेक्शनल भी रिलेशनशिप्स होते हैं, अलग अलग तरह से ग्रुप, सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन से लोग आते हैं, आप उनको देखते हैं, और फिर इनको प्रिडिक्ट कर पाना, यानी प्रिडिक्ट कर जो आप देख रहे हैं भविष्य में भी ये ऐसा ही होगा, दैट इज रिसर्च। आपने आज एक चीज ऑब्जर्व की 10 लोगों में की, 10 में से 9 लोगों ने एक पर्टिकुलर तरह से रिएक्ट किया, आपने कंक्लूजन ड्रा कर दिया, तो भविष्य में भी तो वो वैसा ही होने वाला है ना। उसमें सिमिलैरिटीज क्या है, डिफरेंसेस क्या है, उनका को रिलेशनशिप क्या है, को एफिशिएंट क्या है, वो सारा का सारा आप इसके अंदर मेथड्स के अंदर डिस्क्राइब करते हैं। उसके लिए चाहे आप कोई भी एविडेंस भी इस्तेमाल करें, कुछ करें, उसमें चेंज कैसे होती है, ग्रोथ कैसे होती है, डेवलपमेंट कैसे होती है, सो आप उसके ट्रेड्स को डिस्कवर करते हैं, नॉर्म्स बनाते हैं उसके लिए। कई बार आपको जैसे आपके एमएससी में डॉक्टर निखिल पटेल ही आपको बता रहे थे, जैसे इंडिविजुअल केस स्टडीज आपको करनी है, अब इंडिविजुअल केस हिस्ट्रीज को आप देखेंगे ना, तो उसमें भी आप अपना सारा कंक्लूजन ड्रा करेंगे ना कि मैंने इसको ये सलाह दी, उसके ऊपर ये परिवर्तन आया, फिर ऐसी सलाह दूसरे को दी, ये परिवर्तन आया, तीसरे को दी, ये परिवर्तन। जब आप देखते हैं जितने भी इस तरह के केसेस आते हैं और उनको जब जो ये मैं सलाह दे रहा हूं उनके ऊपर लगभग सेम सा रिजल्ट निकलता है, तो आप जनरलाइज कर देंगे ना, आप जनरलाइज कर देंगे ना कि जब डिस्टर्ब्ड केसेस है, मेंटली टेंशन में है, डिप्रेशन में है, उनको अगर इस तरह की सलाह दी जाए, यानी डिप्रेसिंग कॉजेज की इन इफेक्टिव नेचर की बात की जाए, तो वो बड़ी जल्दी सुधर जाते हैं, बाहर आ जाते हैं अपनी डिप्रेशन से। यानी कहने का भाव क्या कि डिप्रेस हो गए किस बात से, कोई कारण है लाइफ का, कोई कारण है, फाइनेंशियल हो सकता है, सोशल हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है, वो दैट डिप्रेसेस यू, तो आप उसको सबसे पहला एफर्ट ये करते हैं, प्रूव करते हैं ये कॉज बहुतों के साथ होता है, मेरे साथ भी होता था, उसके साथ, आप पूछ के देख लो जाके ना, अपने दोस्त से पूछो, उसको ये भोगना पड़ा ना अपने प्रोफेशन में, आप अपने दूसरे कुलीग को पूछ के देखो, जब उसने नौकरी ज्वाइन की, इस तरह के लोग मिले, फिर आप डिप्रेस क्यों होते। यानी कि ये इट इज सो कॉमन, ऑर्डिनरी, इनइफेक्टिव, ये तो आपका रिएक्शन है जो आपको डिप्रेस कर, यानी यू आर कन्विंसिंग हिम। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आप उनको सबसे पहले तो ये बताएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसका। जैसे उन्होंने एग्जांपल भी दिया था कि अगर आप बैठे हैं और उससे डॉक्टर से बात कर रहे हैं तो वो एक सांप आपके ऊपर फेंक देते हैं, जैसे उन्होंने कहा था कि वो सांप जिंदा नहीं है, बेशक वो एक वो है एक प्लास्टिक का आर्टिफिशियल है, खिलौना मात्र है, तो यानी वो उससे उसका डर निकलेगा। मैं वहां बैठा सुन रहा था, मुझे लगा मैं डॉक्टर साहब उसका हार्ट फेल भी हो सकता है ऐसा अचानक हो सकता है ना, कोई बड़ी बात तो नहीं, संभावना तो है। यानी आई मीन जो रिसर्चर है उसको इस तरह के प्रिकॉशंस लेने हैं, उसको इन बातों का ध्यान रखना है पहले से, अदरवाइज तो रिसर्च करते करते आप जेल में जा पहुंचे तो क्या फायदा होगा उसका। सो पर जेल में आपको सांप नहीं लाने देगा कोई भी। सो देखिए, अब आपके साथ पास नेक्स्ट जैसे जो है क्वेश्चनेयर है, क्वेश्चनेयर द मेथड, यानी ये एक ऐसी फॉर्म है जिसको हम अक्सर यूज करते हैं। इट इज ए फॉर्म प्रिपेयर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू सिक्योर रेस्पॉन्सेज टू सर्टन क्वेश्चंस फ्रॉम ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ विशेष लोगों से विशेष प्रश्नों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए, उत्तर जानने के लिए वो क्वेश्चंस उनको दिए जाते, दिस इज क्वेश्चनेयर। लेकिन क्वेश्चनेयर जो बनाई जाती है, इट इज सिस्टेमैटिक कंपाइलेशन ऑफ क्वेश्चंस। ये किसी भी नॉर्मेटिव सर्वे रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन बहुत सिस्टेमैटिकली इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यानी अगर आप इसको यूज ठीक तरह से नहीं करते, इसके लिए अक्सर कहा भी जाता है इट इज अ मोस्ट यूज्ड एंड एट द सेम टाइम इट इज अ मोस्ट अब्यूज्ड सिस्टम ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। यानी आप इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं, इसका लाभ भी है लेकिन इसका बहुत गलत इस्तेमाल भी होता है। आइदर द इंफॉर्मेशन दैट यू गेट यू आर मिस यूजिंग इट, और द इंफॉर्मेशन दैट यू गेट इज नॉट एक्यूरेट। सो ये भी बहुत बार होता है। तो क्वेश्चनेयर भी जो है कई तरह की है। क्वेश्चनेयर के ऊपर आप दो तीन टाइप के क्वेश्चनेयर हैं, जैसे स्ट्रक्चर्ड या नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर है। यानी आप देखें कि उसको आपने डेफिनेट कॉन्क्रीट डायरेक्ट क्वेश्चंस या पार्शली कंप्लीट वेग उस तरह के क्वेश्चन बनाए, तो वो स्ट्रक्चर्ड या नॉन स्ट्रक्चर्ड हो गई। स्ट्रक्चर्ड मींस जब आपने ध्यान से आराम से सिस्टेमैटिकली उसको बनाया कि पहले किस तरह के क्वेश्चंस हों, पहले प्रोफेशनल लाइफ पर हों, पर्सनल लाइफ पर हों, पर्सनल एनवायरमेंट पे हों, पर्सनल सिचुएशन पर हो या ना हो, जनरल। यानी आपने उस तरह से सिस्टम, ये नहीं है कि एक क्वेश्चन तो आपने बनाया उनकी पर्सनल लाइफ पर, दूसरा क्वेश्चन बनाया प्रोफेशनल पर, तीसरे में फिर आ गए आप उसकी डोमेस्टिक लाइफ पर, चौथे में आ गए कि उसका जो है पब्लिक सोसाइटी के साथ रिलेशन। तो दिस इज अ नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर। यानी आपने उस क्वेश्चनेयर को ठीक से कंस्ट्रक्ट नहीं किया, ठीक से उसको बनाया नहीं है। वो एक तरह का इंटरव्यू टाइप हो जाता है। आप पूछने गए, एक क्वेश्चन पूछा, उसने कोई जवाब दिया, उस जवाब पर आपको एकदम रिएक्शन हुआ, आपने दूसरा क्वेश्चन, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड है ना। पहले से तैयार तो नहीं था कि मैंने ये 10 क्वेश्चन पूछने हैं, 5 पूछने हैं, ऐसा तो नहीं था, लेकिन स्टिल यू गो ऑन विद दैट टाइप ऑफ क्वेश्चनेयर। सो वो इस तरह का नहीं है। सो इसी तरह से क्लोज्ड वर्सेस ओपन फॉर्म भी हो सकती है। यानी क्लोज तो ये है कि आपने रेस्पॉन्स लिमिट कर दिया। जैसे अक्सर हम कहते हैं कि आप ऐसा बनाएं कि 4-5 पॉसिबिलिटीज है, यस नो करें, डेफिनेट करें, नॉन डेफिनेट नहीं। यानी आपने वो बनाए, यस नो डोंट नो, यस नो डोंट वॉन्ट टू आंसर, बस उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। वो कुछ कहना भी चाहे, आपने कहा नहीं, आपने कुछ नहीं कहना, या हां बोलिए या ना बोलिए, नहीं जवाब देना चाहते मत दीजिए, खत्म। आप खुद क्या कहना चाहते उससे हमें कुछ नहीं लेना देना। तो ये क्लोज्ड हो गया ना, कि आप सारी ऑप्शंस उसके लिए बंद करते हैं। यानी लेकिन ये क्या होता है, ये बड़ा क्विक होता है, क्विक है, फटाफट, यस नो यस नो। जैसे हम एक साथ ही पूछ लेते हैं, हां जी इस क्वेश्चन के बारे में आप में से जितने बैठे हैं उनमें से कितने लोग हां करते हैं, हाथ खड़ा करिए, हो गया, जवाब मिल गया ना एक सेकंड में ही। कितने ना करते हैं वो हाथ खड़ा कर देते हैं। चलिए आप में से कोई जो इसका उत्तर ही नहीं देना चाहते, जिन्होंने ना हां में ना ना में वो हाथ खड़ा किया है, वो हाथ खड़ा करिए, चलिए वहां खत्म। सो इट इज वेरी क्विक, बहुत जल्दी जल्दी ये निपट जाता है, हो जाता है। सो दिस इज क्लोज्ड वर्सेस ओपन फॉर्म जो है। और ओपन के अंदर क्या होता है, फ्री रेस्पॉन्स। जैसे मैं प्रश्न पूछूं, आपका क्या विचार, अब जैसे मैंने क्या विचार कहा, एक तरफ मैं कहता हूं डू यू लाइक सच थिंग्स, उसका जवाब तो हां ये नाम ही होगा। डू यू लाइक गोइंग टू सच एन इंस्टीट्यूशन, यस नो आई डोंट नो नेवर थॉट, कभी सोचा ही नहीं, यही जवाब देंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ऐसी संस्था में जाने में आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है, अब वहां आप हां करेंगे या ना करेंगे, वहां तो आपको डेफिनेट ओपिनियन देना है, जवाब देना है ना, तो वो ओपन रेस्पॉन्स है। वहां पर जो है वहां आपको फ्री रेस्पॉन्स देना, कोई क्लू नहीं दिया गया। जैसे येस नो टाइप में तो क्लू दिया गया ना कि आप हां बोलिए या ना बोलिए, खत्म। लेकिन उधर आप बिल्कुल फ्री हैं, आप जो मर्जी कहें ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे कभी बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, उनके व्यूज अच्छे नहीं लगते, उनका आइडिया वगैरह वगैरह कुछ भी कह सकते हैं। तो इसी तरह से जो है कि क्वेश्चनेयर को हम फैक्ट क्वेश्चनेयर भी कह सकते हैं या ओपिनियन क्वेश्चनेयर भी कह सकते हैं, जहां आप केवल फैक्ट्स को करना चाह रहे हैं, फैक्ट स्पेसिफिक फैक्ट्स दे रहे हैं, उसके ऊपर आप यस नो ले रहे हैं या जो भी कर रहे हैं उसके, या फिर आप ओपिनियन ले रहे हैं, उनकी प्रेफरेंस पूछ रहे हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या करना चाहेंगे ऐसे वातावरण के अंदर, अक्सर आपके मन में किस प्रकार के विचार आते हैं। तो ये जो है आपका ओपिनियन क्वेश्चनेयर हो गया ना। सो इस तरह के भी क्वेश्चन है। सो एक अच्छा क्वेश्चनेयर क्या होगा, कुछ एक पॉइंट्स आपकी बुक में भी दिए हैं, मुझे थोड़ा जल्दी चलना होगा। एक तो ये है कि क्वेश्चनेयर जो है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हो जो रेस्पोंडेंट्स को एंथ्यूज कर सके, उनके अंदर एक इंथुजियाज्म पैदा कर सके, उनका दिल करे उसका जवाब देने के लिए। मैंने कई बार देखा, जैसे कई बार आ जाते हैं कॉलेज के अंदर, सर हमें एक क्वेश्चनेयर कर रहे हैं, आप इसका जवाब दें, यस नो टाइप। तो हम लाओ दे दो, देखते हैं टॉपिक ऐसे ही है ना, कोई मजा पता ही नहीं है, हमें इच्छा ही नहीं है उसकी। तो हाँ ना टिक 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 करके ये लो पकड़ो, विद इन फाइव मिनट्स हमने करके पकड़ा दिया, ले जाओ। उसमें कोई इंथुजियाज्म नहीं था ना, क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ा ही नहीं है। सो इसी तरह से जो है अच्छा क्वेश्चनेयर जो होगा वो ऐसा जो डाटा पूछेगा, ऐसा डाटा लेगा जो आम तौर पर किताबों में, रिपोर्ट्स में या इस तरह का नहीं मिलता है, ताकि जो रेस्पोंडेंट है वो सोच के जवाब दे ना। वरना आपने क्वेश्चन पूछा, वो कहे ऐसा तो होता ही है, यस, ऐसा तो कभी नहीं होता, नो, तो उसका अपना विचार तो नहीं आया ना उसके अंदर। सो सोचने पर तो आपको प्रेरणा नहीं देता ना। और क्वेश्चन जो है एज शॉर्ट एज पॉसिबल, आप जो भी क्वेश्चन पूछें शॉर्ट हो, ताकि उसको इजीली समझ आए, जल्दी में समझ आए, ताकि वो उसका जवाब जो है दे सके, इसीलिए वो कॉम्प्रिहेंसिव हो, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हो, यानी वो अपनी बात को वेवरिंग या दाएं बाएं शायद वाली सेंस में ना ले, जो आप पूछ रहे हैं वो डेफिनेट ढंग से पूछें जो है। और क्वेश्चन जो है वो आपका क्वेश्चनेयर यानी नीटली अरेंज्ड क्वेश्चन, जैसे हमने पहले भी कहा है, क्वेश्चन जो है वो रैंडम ना हो, सिस्टमैटिकली अरेंज किए हुए हो, वन बाय वन चल रहे हैं आप, और एक तरह का वन आफ्टर द अदर, एक स्मूथ जो है वो वे से आप चल रहे हैं। और क्वेश्चन जो आप क्वेश्चनेयर में दे किसी को, तो बेहतर है अगर वो प्रिंटेड हो, उसकी भाषा में हो जिसको वो आराम से समझ सकता है। हिंदी भाषी लोगों को अक्सर हम इंग्लिश में क्वेश्चनेयर देते हैं, क्या करें, टाइप कंप्यूटर इंग्लिश में ज्यादा ठीक चलता है, मिलता है, तो वो कई बार इंग्लिश के आपके शब्द ही ढंग से नहीं समझ पाता, तो आपका क्वेश्चनेयर बेकार हो जाता है। सो इसीलिए यानी, और फिर जो आप चाहते हैं रेस्पोंडेंट से, आप जो उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि उसने क्या कहना है, कैसे कहना, तो वो ठीक हो, क्लियर हो, डायरेक्ट समझ आए उसके। और क्वेश्चंस अक्सर ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, केवल उसी पर या उसी व्यक्ति पर लागू होने वाले नहीं, पूरे उस समाज पर लागू होने वाले चाहिए, उनमें सब्जेक्टिविटी कम हो, ऑब्जेक्टिव हो। सो यानी हम, और फिर एक प्रॉपर सिस्टम से प्रोसीड करें, यानी हम देखिए जनरल से स्पेसिफिक की तरफ चले, जनरल क्वेश्चन से लें पहले ना, उसके बाद पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर आए उसके जो है पूछे उनसे। इसी तरह से आइटम्स भी जो है अरेंज की जाए कैटेगरी के अंदर, अगर हमने 20 क्वेश्चन करने हैं तो 5 क्वेश्चन उसकी एजुकेशन पर है, 5 क्वेश्चन उसकी प्रोफेशनल लाइफ पर है, 5 उसकी डोमेस्टिक लाइफ पर है, 5 उसकी जो है अपनी पर्सनल लाइफ पर है, 5 बच्चों, यानी इस तरह से हमने सिस्टमैटिकली उसको अरेंज किया हुआ हो, कैटेगरीज बनाई हुई हो। और वेग क्वेश्चन जो है या ऐसी जो अस्पष्ट सी बातें हैं क्वेश्चनेयर के अंदर, उनको हम अवॉइड करें, उनको ना करें तो ज्यादा अच्छा है। सो इसी तरह से जो है क्वेश्चनेयर ऐसी हो कि जिन क्वेश्चनेयर्स की हम मैकेनिकल टेबुलेशन कर सके, यानी जो डाटा हमें मिलने वाला है उस डाटा को मैकेनिकली हम, यानी हमारा कंप्यूटर उसको एनालाइज कर सके। जैसे आपने, जैसे आपको बताया, पिछले साल भी बताया था कि आपके कंप्यूटर के अंदर वर्ड एक्सेल सॉफ्टवेयर होता है, आप जैसे ही जो है वो करेंगे, चाहे ट्यूबुलर में लाएंगे, चाहे उसमें जो है सर्कल फॉर्म में करेंगे, कैसे भी करेंगे, तो उसका इमीडिएटली कंप्यूटर में एक क्लिक करेंगे तो डाटा आपने दिया, वो कंप्यूटर अपने आप निकाल देता है उसको। वो कितना रेड साइन कितना ऊंचा आना चाहिए और वो ट्यूब जो है बार जो है वो ग्रीन कितनी ऊंची होनी चाहिए वो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये 87% है, ये 15% है, ये 57 या 63% वो कंप्यूटर कर लेता है सारा कुछ। आपने सर्कल बनाया उसमें 63% कितना बनेगा और 7% कितना बनेगा, बाकी 30% कितना बनेगा, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि सर्कल का कितना हिस्सा ब्लू करूं कितना रेड करूं कितना, वो कंप्यूटर अपने आप कर लेगा। वो मैकेनिकली आप देखिए ना, डाटा आपका मैकेनिकली जो है वो असेस हो सकता है, आप उसको मैकेनिकली इंटरप्रेट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। आप जब क्वेश्चनेयर है आपकी तो उसको आप एनालाइज और इंटरप्रेट कैसे करते हैं। जितना भी क्वेश्चन क्वांटिफिकेशन ऑफ डाटा है उसको जो है आप टेबुलेशन में काउंटिंग में ले जाते हैं। अब उसको आप चाहें तो प्रेजेंट करें, चाहे टोटल नंबर में करें, ट्यूबुलर फॉर्म में करें, परसेंटेज में करें, एवरेज में करें, ये अलग अलग तरीके हैं आप किस तरह से उसको एनालाइज करके इंटरप्रेट करते हैं। यानी आपने क्वेश्चन किया और उसको जो है एनालाइज करते वक्त आपने कहा कि लगभग 80% लोगों का रेस्पॉन्स ये होता है, या तो एक आपने ये कहा या टोटल कहा आपने कि देखिए 400 लोगों का अध्ययन करने के बाद मुझे लगा कि 315 लोग जो है इसकी फेवर में हैं बाकी नहीं हैं, या एवरेज के हिसाब पर चलते हैं आप, टोटल्स पर चलते हैं, या ट्यूबुलर फॉर्म बनाकर आप बार्स बनाकर दिखा देते हैं, या न्यूमेरिकल आंसर्स भी जो है वो भी उनको भी न्यूमेरिकल जितने भी हैं उनको भी आप ऐड करके टोटलिंग करके एवरेज निकाल के वो भी दिखा सकते हैं, यानी कैलकुलेशन कर सकते हैं उनके कोरिलेशन वगैरह जितना भी है। तो ये क्वेश्चनेयर जो आप करते हैं उसका एडवांटेज क्या है क्वेश्चनेयर का, यानी आप देखें सबसे पहली बात तो ये बड़ा इकोनॉमिकल है, इस पर को बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं, खर्चा नहीं, लेबर नहीं, सब कुछ बड़ा आसान है। आपने जो है एक पेज पर क्वेश्चंस बनाए, लिखे, उसको तैयार किया, टाइप किया और वो फोटोस्टेट करवा लिया आपने, 100, 200, 400 जितने करे हो गया ना आपका, कोई टाइम नहीं लगा कुछ नहीं। लेकिन इसका ग्रेट पोटेंशियल है, पावर है। आप विदाउट मच एफर्ट यू कैन अप्रोच 400 to 500 पीपल एंड देन कैन गेट देयर रिस्पॉन्स इमीडिएटली, बहुत जल्दी आपको उनका जवाब मिल जाता है। और इसमें भी देखिए सबसे बड़ी बात यह होती है, जब आपका सब्जेक्ट्स जितने भी लोग हैं इन्वॉल्व जिन पर आप पूछ रहे हैं वो स्कैटर्ड हैं, एक ही जगह पर रहने वाले नहीं हैं, अलग अलग जगह पर है, वहां भी ये क्वेश्चन है। अब इंटरव्यू के लिए आप नहीं कर सकते, इंटरव्यू के लिए आपको जाना पड़ेगा उन सब लोगों के पास, कोई इधर रहता है हिसार रहता है, कोई दिल्ली रहता है, कोई माउंट आबू रहता है, कोई अहमदाबाद रहता है, कोई के, अब इतने लोगों की जानने के लिए आप कितनी जगह पर जाएंगे इंटरव्यू लेने के लिए। लेकिन क्वेश्चन के लिए आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आपने कोई, आजकल तो वैसे भी मोबाइल है, नेट है, आप उसको एक फोन करते हैं कि नेट पर जरा देखना मैंने आपको एक क्वेश्चनेयर भेजा, उसका जवाब दे देना, हो गया। और आप पूरी पूरी लिस्ट बना देते हैं एड्रेसेस की, ईमेल आईडी की, और एक क्लिक करते हैं और आपका जितना भी जो है वो क्वेश्चनेयर है उन सब लोगों के पास एक मिनट में पहुंच गया, और वो फिर अपना रिस्पॉन्स कंप्यूटर पर दे, ना उनको आने की जरूरत है, ना डाक का इस्तेमाल करने की जरूरत है, ना पोस्ट ऑफिस में जाके करने की जरूरत है, ना कागज पेन पर लिखने की जरूरत, फौरन जवाब दे देते हैं आपका। ये क्वेश्चनेयर दैट इज वेरी इजी, और इट इज इजी टू प्लान ऑल्सो, इजी टू कंस्ट्रक्ट ऑल्सो। दूसरी बात यह भी है कि अब इंटरव्यू है, आप इन्वेस्टिगेटर हैं, रिसर्चर हैं, आप जो कर रहे हैं उस रिसर्च को, इंटरव्यू को आपको खुद कंडक्ट करना पड़ेगा। अब क्वेश्चनेयर एक ऐसी चीज है, मान लीजिए कि आप इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कागज पेन से ही आपको लेना है, 50, 60, 100 लोगों से लेना, तो आप किसी की ड्यूटी लगा सकते हैं ना, भाई जरा ये जाना फलां बैंक के अंदर, उस कॉलेज के अंदर जाना, उस स्कूल के अंदर जाना, ये सारे उन लोगों को ये फॉर्म देकर उनका जवाब ले आना, वो जाएगा, दे आएगा, ले आएगा, हो गया, आपको खुद जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन कैन यू कंडक्ट द इंटरव्यू मेथड इन दिस मैनर, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इंटरव्यू तो आपको खुद पूछना है, खुद जवाब लेना है उनका ना। यानी ये, और फिर दूसरी बात ये है कि ये बड़ा डिपेंडेबल मेथड है, डिपेंडेबल इन द सेंस कि लोगों ने आपको रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन दी है ना अपनी, आप रिस्पांस जैसे भी मांग रहे थे, चाहे आप क्लोज्ड था या ओपन था, ओपिनियन था, जो फॉर्म भी थी आपकी, आपने जो भी उनसे लिया ओपिनियन, रिटन रिकॉर्ड आ गया ना आपके पास, उन्होंने अपने हाथों से टिक करके दिया या यस नो लिख के दिया या अपना ओपिनियन लिख के दिया, आपके पास आ गया, इट इज डिपेंडेबल। लेकिन इंटरव्यू के अंदर आप देखें कई बार ऐसा होता है कि वो डिपेंडेबल नहीं होता, उस पर्सन ने कुछ कहा लेकिन उसके चेहरे के भाव कुछ और कह रहे थे, अब आप क्या कहेंगे, चेहरे के भावों को ठीक मानेंगे या शब्द उसने कहे वो ठीक मानेंगे? कम से कम आप तो डामाडोल हो गए ना रिसर्चर के तौर पर कि नहीं उसने कहा तो यस, लेकिन मुझे लगता नहीं वो सहमत था, नहीं वैसे हो, उसका विचार कुछ और है, उसके हालात कुछ, यानी दिस इज व्हाट आई ऑब्जर्व, दो द पर्सन सेड यस लेकिन इट वॉज विद सम रिजर्वेशंस, दो ही और शी हैजंट गिवन मी द रिजर्वेशंस, उसने बताया नहीं उसकी क्या ओपिनियन, लेकिन स्टिल आई फील इट वॉज समथिंग लाइक दिस। तो क्वेश्चनेयर में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वहां तो ये हो जाएगा किसी भी तरह से जो है। सो इसको हम प्रिलिमिनरी के तौर पर यूज कर सकते हैं, कोई डीप स्टडी है, बहुत दूर तक हमने जाना है रिसर्च में, तो इसको हम स्टार्ट के अंदर बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर जैसे मैंने पहले कहा, रिटन रिकॉर्ड एड्स टू द वैलिडिटी ऑफ योर जजमेंट, आप जो कंक्लूजन ड्रा करेंगे वो आपका वैलिड होगा, क्यों? क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन डेफिनेट इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय यू। लेकिन इसमें भी देखिए लिमिटेशन है काफी सारी क्वेश्चनेयर की, जैसे आपकी बुक में कहा गया लो वैलिडिटी है, और एक तरह से वो यहां तक कहता है इन ए वे इट इज पूलिंग ऑफ इग्नोरेंस। क्यों ऐसा वो क्यों कहता है कि देखिए आपने उसको यस नो डोंट नो ये ऑप्शंस दिए आपने उसको, अब इसके अलावा भी तो और बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है ना, केवल उसका रेस्पॉन्स यस और नो तक तो नहीं लिमिटेड होता ना। सो इसीलिए, और फिर कई बार ये है कि आपने क्वेश्चनेयर लिया 500, 400, 100, 250, तो आप किन 50 लोगों को देंगे, किन 100 लोगों को देंगे, किन 200 लोगों को देंगे? वो सैंपल तो आप चुनेंगे ना, तो सैंपल भी तो आपका बायस्ड हो सकता है ना। आप अक्सर उन लोगों को देंगे क्वेश्चनेयर जिनसे आप परिचित हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं, इनको कहूंगा तो ये कर देगा, जहां आपको पता हो मैं उनको जानता ही नहीं, वो नया इंस्टीट्यूशन है, वो शहर नया है, उस कॉलेज स्कूल बैंक में मैं कभी गया ही नहीं हूं, मेरा कोई अकाउंट वगैरह नहीं है वहां पर, अब वहां कैसे, तो वहां आप उसको अब चुनते ही नहीं, छोड़ो क्यों परेशान होते हो ना, वहां जाने की क्या जरूरत है, पता नहीं आप 20 लोगों को फॉर्म देंगे उसमें से 2 भी जवाब देंगे कि नहीं देंगे। तो आपका जो सैंपल है यानी क्वेश्चनेयर के लिए वो बायस्ड भी हो सकता है ना, यानी दूसरी शब्दों में यूं कहूं कि नॉट रिप्रेजेंटेटिव। अब हालांकि कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाए, कोई भी रिसर्च की जाए, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसको आप लेते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव हो ना, यानी जिस समाज के ऊपर आप जजमेंट देना चाहते हैं, जो सैंपल आपने लिया वो सारा सैंपल उस समाज को रिप्रेजेंट तो करे, वो समाज का एक जो है वो सैंपल रूप तो हो, लेकिन वो होता है अक्सर कई बार नहीं हो सकता है। इसी तरह से जो आपने क्वेश्चंस दिए यस नो के फॉर्म में लिया, वो क्वेश्चंस आर यू श्योर कि वो मिस इंटरप्रेट नहीं होंगे? आपने जो क्वेश्चंस दिए वो वही समझेंगे जो आप समझाना चाहते हैं, क्योंकि आप सामने तो है ही नहीं ना, वो आपसे पूछ भी नहीं सकते भाई साहब क्या मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, आप क्या जानना चाहते हैं, वो तो नहीं, उसने पढ़ा जो उसको समझ आया उसने जवाब दे दिया, ही मे नॉट बी क्लियर अबाउट इवन द क्वेश्चंस। और फिर दूसरा, जैसे हमने कहा पहले भी कि ये क्लोज टाइप है, क्लोज यस नो डोंट नो क्लोज टाइप, सो मींस स्ट्रक्चर इसकी रिजिड हो गई ना, यानी काफी रिजिड है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने जैसे क्वेश्चन पूछा विमेन पर, उस दिन गुप्ता जी जैसे बात कर रहे थे विमेन पर, क्या पुरुष को अधिकार है महिला पर हाथ उठाया जाए, तो ऐसे कई क्वेश्चंस हो सकते हैं जिस पर रेस्पॉन्डेंट जवाब देना ही नहीं चाहता, नहीं देना चाहता जवाब, तो उसका ये मतलब तो उसको कहां लेंगे आप, कई ऐसे कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं। मान लीजिए, क्या लड़कियों का पेरेंटल प्रॉपर्टी में हक होना चाहिए? अब किसी लेडी से आप पूछेंगे, वो यस कहती है, यस मन में, लेकिन कागज पर वो यस नहीं कहेगी कि मेरे पति को पता लग गया तो मुश्किल हो जाएगी। अब कंट्रोवर्शियल इश्यू है ना, उस पर शायद वो रिस्पॉन्ड ना करना चाहे। सो इस तरह की भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और जैसे इंटरव्यू के अंदर हम जो जेस्चर्स हैं, बिहेवियर है, रिएक्शंस हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, वो हम इंटरव्यू मेथड के अंदर तो देख लेते हैं, क्वेश्चनेयर में तो हम देख भी नहीं पाएंगे। क्वेश्चनेयर में जो रेस्पोंडेंट है वो इस जवाब को यस या नो देते वक्त, कई बार हम उसमें रेस्पॉन्सेज के अंदर जो है डेफिनेटली नॉट, इस तरह की ऑप्शंस भी दे देते हैं, स्ट्रांगली रिजेक्टेड वगैरह। तो स्ट्रांगली रिजेक्टेड के समय उसके भाव कैसे थे, वो क्यों रिजेक्ट कर रहा था, क्या था उसके फेशियल एक्सप्रेशन, वॉज इट हेट्रेड, वॉज इट कन्विक्शन, वॉज इट डिसलाइक, वट इट वॉज। सो आई मीन, ये चीजें जो है ये क्वेश्चनेयर फॉर्म नहीं ढूंढ पाता जो है। सो इसी तरह से हो सकता है आपके जो व्यूज हैं वो सब्जेक्ट को, जो रेस्पोंडेंट है उसको पसंद ही ना हो, बेशक आपने दे दिया। कई बार वो लोग कह देते हैं, कई बार जैसे हमारे पास कभी कोई आता है, मतलब मैं कहता हूं नहीं, आई डोंट एग्री विद द सब्जेक्ट, जो आप सोच रहे हैं ये मुझे तो अच्छा। सर आप जवाब तो दे दें, क्या फर्क पड़ता है? अब जब वो ऐसा कहे, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आई लिव एट ए प्लेस जहां 2-3 यूनिवर्सिटीज हैं, वहां रिसर्च चलती है, तरह तरह के लोग आते हैं, कॉलेजेस के अंदर ले आते हैं, सर ये इसको रिस्पॉन्ड करिए जरा प्लीज। तो हम कई बार कहते हैं नहीं, ये टॉपिक आई डोंट थिंक आपका ये टॉप, सर आप जवाब दे दीजिए, हमें तो हमारे गाइड ने ये दिया, अब हमें रिसर्च तो करनी है। अब आजकल एमबीए के अंदर जो है फील्ड रिसर्च बहुत ज्यादा चलती है, आपके घरों में भी बेल देंगे, बहन जी आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, आप बताइए ना, आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, इसको यूज करते हैं, इसके बारे में आपका, अरे बाबा मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तू ले जाना। अब ऐसे व्यक्ति के लिए मेरे जैसे से आप पूछेंगे तो क्या जवाब देगा वो, तो ही डजंट लाइक द सब्जेक्ट एट ऑल, स्टिल आप चाहते हैं कि वो ही शुड शेयर योर व्यूज, यू शुड बी रेस्पॉन्डेड प्रॉपरली, अच्छी तरह से हो। सो ऐसे कई कॉन्फिडेंशियल एरियाज भी होते हैं जहां वो खुद ही जवाब नहीं देना चाहता है। और फिर क्वेश्चनेयर एक ऐसा मेथड है जो आप इलिटरेट लोगों के साथ तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि इलिटरेट लोगों का कोई ओपिनियन नहीं होता, जो अनपढ़ हैं बेचारे, लेकिन वो उनमें विजडम नहीं है क्या? उनके ओपिनियन है, लेकिन आप क्वेश्चनेयर फॉर्म से तो कर ही नहीं सकते ना उनको, उनको अपने उसके अंदर इंक्लूड, रिसर्च के अंदर इंक्लूड ही नहीं कर सकते हैं। सो ये कई प्रॉब्लम्स हैं इस तरह की जो दिक्कत होती है। देन वी कम टू हाइपोथेसिस, टाइम तो ऑलरेडी एंड, कैन आई टेक अनदर 10 मिनट्स, क्योंकि हमने 4:15 शुरू किया था। ओके okay. आई थिंक 6:15 तक चाय भी पीनी है 10 मिनट बाद? नहीं नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसा है कि नहीं, वैसे भी वो तो बोला गया था कि 6:15 का टाइम बोला गया था, क्योंकि वी स्टार्टेड एट 4:15। सो अगर आप 15-20 मिनट दें तो वैसे तो बहुत लंबा है अभी, लेकिन आई ट्राई दैट आई फिनिश विद इन अबाउट 15 मिनट्स। चलिए, व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस है क्या? जब आपने देखिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसके बाद रिसर्च के लिए आगे बढ़ेंगे कैसे, तो एक हाइपोथेसिस फॉर्म करेंगे ना आप, यानी एक ओपिनियन आपने लोगों का लिया, उसके बेस पर आपने एक जजमेंट बनाई, उस जजमेंट को आप टेस्ट करेंगे आप। अब देखिए, आप ये मत सोचिए कि जी हम रिसर्च कर रहे थे, हमने क्वेश्चनेयर बनाई थी, वो हो गई ना रिसर्च, वो तो आप एक हाइपोथेसिस बना रहे हैं ना अभी तो। अब आपने देखा, इतने क्वेश्चंस पूछे, उसके बेस पर आप एक जजमेंट पर आ रहे हैं, उस जजमेंट को जो है फिर टेस्ट करेंगे आप। सो यू फ्रेम ए सॉर्ट ऑफ हाइपोथेसिस। सो हाइपोथेसिस क्या है कि इट इज ए स्टेटमेंट विच हैज बीन टेम्परेरली एक्सेप्टेड एज ट्रू। in the light of what is known at a particular time. ये है, यानी ध्यान से करें कि hypothesis वो चीज है जिस विचार को आप वर्तमान में अभी फिलहाल एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो तथ्य आपको नजर आते हैं वो उसके अनुकूल हैं, और इसी के बेस के ऊपर, ये जो आपने हाइपोथेसिस बनाई इसके बेस के ऊपर यू विल फाइंड द न्यू ट्रुथ, इस आधार पर आप नए सत्य को तलाश करेंगे, दैट विल बी द रिसर्च. सो यू आर एट द हाइपोथेसिस लेवल. सो हाइपोथेसिस क्या करती है? हाइपोथेसिस देखिए, जब हमने एक सपोजिशन बनाई, इट लुक्स फॉरवर्ड इन फ्यूचर, यानी क्या है ये आपके थिंकिंग प्रोसेस को गाइड करती है, क्योंकि आपने एक सपोजिशन बना ली ना, एक लाइन बना ली और उसी लाइन के ऊपर ही आप सोचते हैं, अगर ये है तो क्या होना चाहिए, कैसे होगा, क्या मिलना चाहिए. सो और देखिए, इसको हाइपोथेसिस को हम गेस भी कहते हैं, अंदाजा भी कहते हैं. सो ये जो गेस है, इट शुड बी वेरी इंटेलिजेंट एंड श्रूड, यानी बिल्कुल तथ्यों पर आधारित, कहीं भी पर्सनल ओपिनियन को या कहीं भी लोगों के ओपिनियन को, इमोशंस को बीच में मत आने दीजिए किसी भी तरह से, क्योंकि इट इज ए प्रोविजनल स्टेटमेंट ऑफ द ट्रूथ. हो सकता है आपकी यही सपोजिशन ठीक हो और कल आप इसी को एक थ्योरी के रूप में, एक सिद्धांत के रूप में देंगे. तो इसीलिए ये प्रोविजनल स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ भी हो सकती है, और ये इट इज पुट टू टेस्ट. जब आपने हाइपोथेसिस बना ली तो इट इज पुट टू टेस्ट फॉर इट्स एक्सेप्टेबिलिटी, टेनेबिलिटी, कि क्या ये वाकई टेनेबल है, एक्सेप्टेबल है, ये हो सकता है. तो हाइपोथेसिस की इंपॉर्टेंस, क्योंकि जब तक आप हाइपोथेसिस नहीं बनाएंगे आप इसकी रिसर्च आगे नहीं बढ़ सकती. क्यों? मन में जब तक आइडिया नहीं होगा आप आगे कैसे चलेंगे? आप मछलियों के बारे में भी सोच रहे हैं, तो जब तक आप एक लाइन ड्रा नहीं करेंगे, मछलियों के किस एस्पेक्ट को मैं देखना चाहता हूं, मेडिटेशन के किस एस्पेक्ट को मैं देख रहा हूं, द इंपैक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन वर्किंग प्रोफेशनल वीमेन वगैरह वगैरह. तो मैंने एक लाइन बना दी ना, तो जो दूसरा आता है उसको मैं एक्सक्लूड करता जा रहा हूं, नहीं नहीं नहीं, इस पर नहीं देखना मैंने, इसको नहीं सोचना, इसको नहीं इंक्लूड करना मैंने. सो यानी ये एक तरह की मेरे को डायरेक्शन देती है, नेचुरली सेंसिटाइज करती है, मैं हर बात में वही टॉपिक को देखूंगा. कोई मेडिटेशन करता मिला, पूछ भाई साहब आप क्या करते हैं, कहां काम करते हैं, इंडस्ट्री में हैं, बैंक में हैं, बहन जी आप काम करते हैं, जॉब पे जा, यानी मेरा हर बात जो है, आई बिकम वेरी सेंसिटिव, क्योंकि रिसर्चर के मन में तो वही चीज है ना, मेरा थिंकिंग प्रोसेस उससे जुड़ा हुआ है, मेरा बिहेवियर उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेरी रिसर्च उधर है ना, तो माय रिसर्च इज इन ए वे फोकस्ड. जैसे आप एक पर्टिकुलर फोकस ले लेते हैं, यानी ब्रॉड नहीं, बहुत फैलाव नहीं, जितने भी नजर आते हैं सारे नहीं नहीं नहीं. अब जैसे देखिए, जब आपके मन के अंदर कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल है, हम यहां 100 लोग बैठे हैं, आप एक नजर डालेंगे आपको लग जाएगा कि जो मैं चाहता हूं उस तरह के 4-5 लोग यहां बैठे हैं, आपने बाकियों को देखा ही नहीं. क्यों? क्योंकि आपका जो रिसर्च है वो फोकस्ड है, आप एकदम उस पर नजर जाती है, मुझे ये चाहिए, बाकियों से नहीं मतलब मुझे. सो द रिसर्च बिकम्स अ फोकस्ड वंस यू हैव द हाइपोथेसिस. और इसीलिए जब फोकस्ड है तो नेचुरली आप उसमें कोई ब्लाइंड एफर्ट्स नहीं करेंगे, अंधाधुंध प्रयास नहीं करेंगे. क्यों? आपको पता है मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या ढूंढना है. सो इसीलिए इट विल ऑलवेज लीड यू टू दोज पर्टिकुलर फैक्ट, और अदरवाइज यू विल ओवरलुक देम. अगर वो उन फैक्ट्स की तरफ बढ़ता हुआ नजर नहीं आता आपका सब्जेक्ट, तो आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे, उसको छोड़ देंगे, परे चलेंगे. सो इसी तरह से आपके गोल्स बड़े स्पष्ट हो जाते हैं इसके साथ, कि मुझे ये ढूंढना है, इसके अलावा नहीं मतलब मुझे. आप कोई आप मेडिटेशन पर जैसे देखिए किताब लेने जाते ना, तो आपने कहा कि द इम्पैक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन विमेन, मान लीजिए ये आपका टॉपिक है, लाइब्रेरी में जाते हैं और एक बुक मिल गई मेथड्स ऑफ मेडिटेशन, नहीं नहीं ये नहीं चाहिए मुझे ये किताब, अरे मेडिटेशन नहीं, मेडिटेशन पर तो है, मुझे तो मेडिटेशन का इम्पैक्ट ऑन विमेन उस पर चाहिए, और मेडिटेशन की कोई जनरल बुक है तो उसमें भी आप खोल के देखेंगे, उसके पन्ने पर ताएंगे, चैप्टर देखेंगे कि उसके अंदर क्या इम्पैक्ट पर है कोई चैप्टर, अगर आपको लगता है इंडेक्स में कोई चैप्टर नहीं तो उस किताब को भी परे रख देंगे आप, यानी आप इस प्रकार से जो है जो चीजें उससे रिलेट नहीं करती हैं आप उनको ओवरलुक करते जाएंगे, छोड़ते चले जाएंगे जो है। सो आप इस प्रकार अपना एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, एक आउटलुक बनाते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं और उस फॉर्मेट के आधार पर जो है अपनी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। लास्टली सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस, अब सोर्स बहुत सारे हैं हाइपोथेसिस के लिए कि आप हाइपोथेसिस तैयार कैसे करें, एनीबडी एवरीबडी कैन नॉट डू इट। देखिए अगर आपको रिसर्च करनी है, रिसर्च के लिए भी आपको आपका एक्सपीरियंस चाहिए, आपके अंदर क्रिएटिविटी होना चाहिए, यू शुड बी रेडी फॉर परसिस्टेंट एफर्ट ऑल्सो, यू शुड हैव सफिशियंट टाइम ऑल्सो एंड यू शुड बी एबल टू पुट इन सफिशियंट लेबर ऑल्सो, ओनली देन यू कैन से कि आई विल बी एबल टू अंडरटेक सम सॉर्ट ऑफ हाइपोथेसिस एंड डू इट। सो इसके सोर्सेज क्या है, जैसे हम कैसे हाइपोथेसिस बनाते हैं, कई बार जो है हम जनरल कल्चर के आधार पर बनाते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर बनाते हैं, एनालॉजीज के आधार पर बनाते हैं, यानी इस तरह की हाइपोथेसिस बनाते हैं। और हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी ए गुड हाइपोथेसिस इज ऑलवेज इन एग्रीमेंट विद ऑब्जर्व्ड फैक्ट, यानी जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको आप देखते हैं, यानी डजेंट कॉन्फ्लिक्ट विद एनी लॉ ऑफ नेचर, इट इज एक्सपर्ट इन साइंटिफिक लैंग्वेज, इट इज स्टेटेड इन अनएम्बिग्वस टर्म्स, और ऑलवेज इकोनॉमी इज ऑब्जर्व एंड दैट इज हाइपोथेसिस ऑल्सो परमिट्स द एप्लीकेशन ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग वेरीफाइबिलिटी, कि आपकी जो भी उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट हो, तर्क हो, वो उसके ऊपर लागू हो और वो वेरीफाइएबल हो। Its tests should also provide answers to problem and then it must be stated in a final form before the research starts. Research shuru karne se pehle there should be some final format jisme aap jo hai wo dete hain. थोड़ा सा रह गया इसमें हाइपोथेसिस की टाइप क्या है, नल फॉर्म, प्रिडिक्शन फॉर्म, डिक्लेरेटिव फॉर्म, क्वेश्चन फॉर्म, और फिर उसके बाद हमें हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे करना है, यानी लॉजिकल है और दूसरे ढंग से है। सो ये दो तीन चीजें हैं, आई होप यू विल बी एबल टू सी एट होम, क्योंकि टाइम दो पीरियड का था एंड वी हैवंट बीन एबल टू टेक, सो आई थिंक आई शुड फिनिश हियर। थैंक यू. Thank you very much.